Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Prabhupada ki jai. Krishna kirtana gana nartana paro prema amritam bonidhi. Dhira dhira jana priya priya karo nirmacharo pujito.
Dhira dhira jana priya priya karo nirmacharo pujito.
Shri Chaitanya Kripa Bhara Bhuvi Bhuva Mara Vahantara Ko.
Shri Chaitanya Kripa Bhara Bhuvi
ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನ ರಘುಯುಗ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಕನಿಪುಣೋ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೋ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಿಣೋ ತ್ರಿಭುವನೆ ಮಾನ್ಯ ಶರಣ್ಯಾಕರೋ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವೆ ದಭಜನ ನಂದೇನ ಸಮ್ಮೋಹಿತೋ ನಂದೇನ ಮತ್ತಾಲಿಕೋ ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನ ರಘುಯುಗ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೋ ಗೌರಂಗ ಗುಣಾನುವರ್ಣನ ವಿಧ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮೃದ್ಧ್ಯಾನ್ವಿತೋ ಪಾಪೋತಾಪನಿ ಕೃಂತನ ತನುಮೃತ ಗೋವಿಂದ ಗಾನಾಮೃತ ಆನಂದಾಂಬುದಿವರ್ಧನೈ ಕನಿಪುಣೋ ಕೈವಲ್ಯ ನಿಸ್ತಾರಕೋ ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನ ರಘುಯುಗೋ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೋ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತೂರ್ಣಮಶೇಷಮಂಡಲಪತಿಂ ಶ್ರೇಣಿಂ ಸದಾ ತುಚ್ಛವ ಭೂತ್ವಾದೀನ ಗಣೇಶಕೋ ಕರುಣಯಾ ಕೌಪೀನ ಕಂತಾಶ್ರಿತೋ ಗೋಪೀ ಭಾವರ ಸಾಮೃತ ದಿಲಹರಿ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಗ್ನೋ ಮೋಹೋ ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನ ರಘುಯುಗ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೋ ಜತ ಕೋಕಿಲ ಹಂಸ ರಸಗಣ ಕಿರಣೆ ಮಯೂರಾಕುಲೆ ನಾನಾರತ್ನ ನಿಬದ್ಧ ಲವಿಟಪ ಶ್ರೀಯುಕ್ತ ವೃಂದಾವನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪದ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗುಣಸ್ಮೃತೇರ್ಮಧು ಜೀವಾರ್ಧದೋಯೋ ಮುದಾ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ನಿಶಂ ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನ ರಘುಯುಗ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೋ ಸಂಖ್ಯಾಪೂರ್ವಕ ನಾಮಗಾನನತಿ ಕಾಲಾವಸಾನಿ ಕಾಲಾವಸಾನಿ ನಿದ್ರಾಹಾರ ವಿಹಾರ ಕಾದಿ ವಿಜಿತೋ ಚಾತಂಚ ದೀನೋ ಚಯೋ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗುಣಸ್ಮೃತೆ ಮಧುರಿಮಾ ಅಂದೇನ ಸಮ್ಮೋಹಿತೋ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನ ರಘುಯುಗ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೋ ವಂದೇ ಕುಂಡತಟೇಕಲೆ ದಿತನಯ ತೀರೆ ಚ ವಂಶೀವಟೆ ಶೇಷದಶಯ ಗ್ರಸ್ತೋ ಪ್ರಮತ್ತೋ ಸದಾ ಗಾಯಂತೋ ಚ ಕದಾ ಹರೇ ಗುಣವರಂ भावाभिभूत मुदा सनातनौ रघुयुग श्रीजीव गोपालको हे राधे व्रज देविके चललिते सुनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालेन्दे वन्ये कुता शन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे तैजैर्महाविह्वलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोस्वामी अष्टकम की श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नश्च प्रायेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सदीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणाललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमामं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तु ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमे स्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषये नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते जयतां शरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ कृष्णालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रीयस्तु नः तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि ऋषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो कल हम रूप गोस्वामी के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रयाग में मुलाकात हुआ, प्रयाग में मुलाकात होने पर चैतन्य महाप्रभु बिंदुबाद मंदिर से कीर्तन करते हुए आ रहे थे, अनेकों अनेकों लोगों के साथ कीर्तन कर रहे थे। इतना अद्भुत कीर्तन हो रहा था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कल हमने आप ये सुना कि प्रयाग में तीन नदियां बहती है और उसका संगम होता है, लेकिन आज तक उधर बाढ़ नहीं आया। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो प्रेम नाम संकीर्तन है, वो संकीर्तन में सारे जो प्रयागवासियों को ये संकीर्तन का बाढ़ में प्रेम कृष्ण प्रेम के सागर में बाढ़ में डुबा दिया। जब दूर से देख रहे थे रूप गोस्वामी और अनुपम, ये दोनों ने निश्चय किया कि हम अभी जाएंगे नहीं मिलने के लिए। क्यों? अति नम्रता। अगर नज़दीक में जाएंगे चैतन्य महाप्रभु हमको आलिंगन करेंगे और चैतन्य महाप्रभु का हमको मान्यता देंगे, सब लोग सोचेंगे हम बड़े भक्त हैं, इससे दूर रहेंगे। तो संकीर्तन होने के बाद चैतन्य महाप्रभु एक दक्षिणा के ब्राह्मण के घर में प्रसाद लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुआ। तब सबसे पहली बार ये जो हम प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरत्विषय नमः, ये प्रणाम मंत्र को रूप गोस्वामी पाद ने उच्चारण किया। तो हम ये भी देखा किस प्रकार वल्लभ भट्ट के साथ उनका मुलाकात हुआ। वल्लभ भट्ट या वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी को आलिंगन करने आ रहे थे। रूप गोस्वामी ने कहा मैं अब नीच जाती कि हम आपका स्पर्श मत कीजिए। महाप्रभु हंस रहे थे। वल्लभ आचार्य ने कहा कि आप हंस क्यों रहे हो, ये तो महान वैष्णव हैं, जो कृष्ण का नाम उच्चारण करता है वो सारे वैदिक क्रियाकांड को अपने पूरा जन्म में अनेकों अनेकों जन्मों में कर दिया है, तभी तो इसका ये सिद्धि प्राप्त हुआ है, इसलिए वो नीच नहीं है, वो महान है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है आप बड़े ब्राह्मण परिवार के हो, आप अभी उनको छोड़ दो। दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे वल्लभाचार्य, गौड़ीय का भाव को आप नहीं समझ सकते। गौड़ीय का हृदय जो है नम्रता से भरा रहता है, ये जो नम्रता क्या है ये केवल गौड़ीय जानता है। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य से कहा। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु अपने घर लेके गए। किस प्रकार रघुपति उपाध्याय से किस प्रकार भेंट हुआ, कृष्ण लीला का चर्चा हुआ, वो सब करते करते चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को 10 दिन तक दशाश्वमेध घाट में जो युग धर्म है, यानी अभी इस कलयुग का जो धर्म है संकीर्तन या भक्ति है अभिधेय के विषय में 10 दिन तक उन्होंने प्रवचन या चर्चा किया। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शक्ति संचार किया। क्या शक्ति प्रदान किया? जो वो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु उनको समझने की शक्ति। जब तक भगवान की शक्ति नहीं होता है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो भगवान के विषय में अभिधेय तत्व के विषय में श्रवण करना और सुनना, सुन के समझना, ये तभी संभव है जब शक्ति संचार होता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति संचार करके रूप गोस्वामी पाद को 3 विषयों के ऊपर बताया। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रसतत्व प्रांत प्रभु कोयलिनु भागवत सिद्धांत। कृष्ण तत्व के विषय में चर्चा किया। दूसरा रस तत्व या भक्ति तत्व यानी साधन भक्ति इत्यादि, और तीसरा है उन्होंने चर्चा किया रस तत्व। तो कल हम इसके आगे चर्चा करते हुए जिस प्रकार रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया कि अनेकों अनेकों जीव हैं, उनमें से जो भक्ति को प्राप्त करता है अति दुर्लभ है। प्राय मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, अनेकों अनेकों मुक्त लोगों में प्राय कुछ लोगों को भक्ति मिलता है। अस्तित्व में ये भक्ति जो है मुक्ति से परे की बात है, तो इसलिए मुक्तानाम अपि सिद्धानाम। वैसे तो सुसंस्कृत लोग हैं बहुत कम हैं, उसमें भी वैदिक संस्कृति को पालन करने वाले भी बहुत कम हैं। वो वैदिक संस्कृति को पालन करने वाले बहुत कम लोगों में कुछ ही लोग हैं वैदिक संस्कृति के उद्देश्य जो है, वेदों का वास्तविक उद्देश्य भवबंधन से मुक्ति, वो जानने वाले बहुत कम हैं। और मुक्त हुए जो लोग हैं प्राय बहुत कम मिलते हैं। ऐसे अनेकों अनेकों जो मुक्त जीवों में प्राय आपको एक भक्त प्राप्त होता है। तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है उसका वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति लता बीज भक्तों की संगति से प्राप्त होती है। ब्रह्मांड भ्रमिते वाय कोनो भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसाद वाय भक्ति लता बीज। कल हमने थोड़ा सा विस्तार से चर्चा किया किस प्रकार इस भक्ति लता बीज को उगाना चाहिए। उसके विषय में रूप शिक्षा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिधेय यानी जब हम भक्ति कर रहे हैं उस समय किस प्रकार करना चाहिए, किस किस चीज़ों से सावधान होना चाहिए। खास करके मदमत हाथी से सावधान होना चाहिए। ये मदमत हाथी क्या है? वैष्णव अपराध है। उसके सावधान कैसे रहें, क्योंकि अपराध करने की प्रवृत्तियां तो हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते अपराध करने की प्रवृत्तियाँ हैं ही नहीं। अपराध करने की प्रवृत्तियाँ हैं तो इससे हम कैसे बचें? तो वैष्णव सदाचार को पालन करने के द्वारा हम बच सकते हैं। वैष्णव सदाचार एटिकेट जो है, संस्कृति जो है, वो अच्छी तरह से पालन करेंगे भले ही हमारे हृदय में वैष्णव अपराध करने की प्रवृत्तियां भी क्यों ना हो, इससे हम बच सकते हैं। तो हम इस प्रकार सुनते सुनते इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति रसामृत सिंधु के जो श्लोक हैं या शुद्ध भक्ति के विषय में वर्णन करने वाला जो श्लोक है उसके विषय में कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी पाद को। भक्तिरसामृत सिंधु में या उसका जो मूल श्लोक है इसको परिभाष सूत्र कहा जाता है, अन्याविलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तमा, ये श्लोक को कोट करके आगे वर्णन करते श्री चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी पाद को। कहते हैं हे रूप गोस्वामी सुनो, ये जो भक्ति जो है वो मुक्ति से परे है, इसलिए भक्त जो है मुक्ति को भी नहीं चाहता है। ये भागवत सिद्धांत है, पूरा भागवत का सार यही है, या किसके लिए भागवत की रचना की गई है उसके अनेकों अनेकों कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण ये हैं ये बताने के लिए कि मुक्त जीव भी भक्ति करते हैं। इसलिए आत्मा रमस्य मुनयो निर्गुंता विरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्ति मुक्तितम भूतगणो हरि, इत्थम भूतगणो हरि। नैमिषारण्य ऋषियों का एक प्रश्न ऐसा है कि सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त थे, मुक्त होने पर भी ये बड़ा भागवत को सुनने का इतना बड़ा प्रयास क्यों किया? क्योंकि मुक्तानाम, ये मुक्त लोगों के को भी आकर्षित करने वाला है ये भागवत। कृष्ण कथा इतना अद्भुत चीज है कि मुक्त लोगों को भी आकर्षित करता है, मुक्त लोग भी भक्ति करना चाहते हैं। भक्ति जो है वो मुक्ति से परे की बात है, परे की अवस्था है। नारद व्यास संवाद में इसी बात को कहते हैं, व्यास देव ने कहा मैं तो भक्ति का महिमा को बहुत वर्णन किया है, लेकिन नारद जी ने कहा तुमने भक्ति का वर्णन महिमा का जो वर्णन किया अन्य पुराणों में कैसे वर्णन किया? भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन इस ये जो स्टेटमेंट है भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है वो भक्ति के प्रति अपमान है। अस्तित्व में भक्ति जो है मुक्ति के बाद की अवस्था है, इस बात को स्थापना करने वाला ग्रंथ को रचना करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को कहा ये जो ग्रंथ है जो भक्तिरसामृत सिंधु रचना करोगे मेरी शिक्षाओं के ऊपर आधारित होते हुए, उस ग्रंथ का शुरुआत में स्थापना करो। सालोक्य श्राष्ट सामिप्य, ये इतने सारे मुक्ति हैं, ये जो पांच प्रकार के मुक्ति हैं, दियमानम न गृणंती विना मत्सेवनम जना, भागवत का श्लोक कपिल देवती संवाद में आता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कोट करके कहते हैं रूप गोस्वामी तुम ये श्लोक को ये श्लोक के द्वारा प्रारंभ करो, यानी शुद्ध भक्ति से ही शुरू करो तुम्हारा, और कोई कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा और कर्मकांड की बात ही छोड़ो, केवल ये शुद्ध भक्ति का वर्णन करने वाला ग्रंथ की रचना करो जो भागवत सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तब रूप गोस्वामी पास शुरुआत में इन्हीं श्लोकों को कोट करते हुए भक्तिरसामृत सिंधु को आगे रचना करते हैं। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को ये भक्ति की शिक्षा वर्णन करते हैं, तब साधना भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति का डिविजन्स के बारे में वर्णन करते हैं, उसके बाद जो रस तत्व है उसके विषय में कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को पांच रसों के विषय में कहा, शांत दास साक्षी वात्सल्य और माधुर्य, और विस्तार से वर्णन किया ये पाँचों के गुण क्या हैं, और एक एक रस को वर्णन करने वाले एक एक श्लोक को भी उन्होंने कोटेशन दिया, और सात गौण रस का भी वर्णन किया, और भक्ति करने की जो विधियां हैं कुछ मुख्य विधियां उसका वर्णन किया। करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके कृष्ण की जो खोए हुए जो लीलाएं लीला स्थलियों का आप पुनः स्थापन करो, मंदिरों को निर्माण करो, और ये जो विग्रह हैं उसको पुनःस्थापन करो जो वज्र आपके द्वारा स्थापना किया विग्रह हैं। और चौथा चीज़ है शिक्षा देने के लिए मेरे शिक्षाओं के ऊपर आधारित होते हुए ग्रंथों की रचना करो। ऐसा करके श्री चैतन्य महाप्रभु वो आगे जा रहे थे, यानी प्रयाग से आगे जा रहे कहाँ बनारस की ओर, तो गंगा पार करने के लिए जा रहे हैं। उस समय रूप गोस्वामी पाद ने कहा मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम जाओ वृंदावन में जाके सेवा करो, मेरे आदेश को पालन करो। ऐसा करके श्री चैतन्य महाप्रभु आगे निकल पड़े, और रूप गोस्वामी पाद कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विरह में वो उनके आदेश को पालन करने के लिए वो आए। कहाँ कहाँ पहुँचे? वो वृंदावन पहुँचे। जब वृंदावन पहुँचे रूप गोस्वामी पाद उनको मुलाकात हुआ सुबुद्धि राय से। जैसे मैंने पहले कहा था सुबुद्धि राय के विषय में, वो सुबुद्धि राय को पूरा उन्होंने रूप गोस्वामी को रहने का स्थान दिया, अच्छी तरह से 12 वनों को उन्होंने पूरा घुमाया। बाद में कुछ समय के बाद रूप गोस्वामी पाद ने सोचा अनुपम के साथ, अनुपम भी साथ में थे, तो भाई मुझे जाना है श्री चैतन्य महापुरुष से मिलने के लिए। जब मिलने के लिए उन्हें संकल्प लिया तो उन्हें सोचा पहले मैं बंगाल जाऊंगा, बंगाल जाके अपने जो परिवार वाले हैं उन सबको मिलूंगा, क्योंकि मैंने धन तो इकट्ठा किया था उन सबको बांटा नहीं अभी तक, मिलके और रास्ते में मैं सनातन गोस्वामी से मिलूंगा, उनका भी परिचय हो जाएगा, वो मिल सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद वो वृंदावन से निकल पड़े। जब निकलने के समय रूप गोस्वामी पाद ने सोचा कि रास्ते में जाऊंगा और जाते जाते जब पुरी पहुंचूंगा, पुरी में रहूंगा, चैतन्य महापुरुष से मिलूंगा, तो मैं कृष्ण का लीलाओं का पर लीलाओं के ऊपर आधारित होते हुए ग्रंथ का रचना करूंगा। लेकिन कैसे रचना करूंगा, एक सुंदर नाटिका के रूप में रचना करूंगा। ऐसा विचार करते हुए रूप गोस्वामी पाद अभी पूरी की ओर वया बंगाल, बंगाल होते हुए पूरी जाने का और श्री चैतन्य महापुरुष से मिलने का उन्होंने निश्चय किया। इसलिए अंत लीला के पहले अध्याय में ऋषिदास कविराज गोस्वामी रूप गोस्वामी का और श्री चैतन्य महाप्रभु का दूसरा मिलन, पहला मिलन हुआ था प्रयाग में, दूसरा मिलन अभी जगन्नाथपुरी में होने वाला है, उसका वर्णन करते हैं। बड़ा अद्भुत अध्याय है, इसके अंदर बहुत गहरे गहरे तत्व हैं, हम कुछ भाग को ही चर्चा करेंगे क्योंकि इतना रसमय है, हमारा उतना मति इतना अनुभव नहीं है इसके ऊपर चर्चा करने के कुछ भाग की, इसलिए इस अध्याय के कुछ अंश जो हम हजम कर सकते हैं उसको चर्चा करेंगे। वृंदावने नाटकेर आरंभ करिला मंगला चरण नादि श्लोक तथापि लिखिला। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रसन्नता के लिए तो वृंदावन में संकल्प लिया और ये जो नाटक का जो प्रारंभ के जो श्लोक है वो मंगलाचरण के रूप में उन्होंने रचना किया। पटे चली आसी नाटके घटना भविते कड़च करिया किच्चो लागिला लिखिते। हाँ, गौड़ देश के रास्ते में रूप गोस्वामी ऐसा सोच रहे थे, विचार कर रहे थे ये जो ड्रामा कैसे लिखूं, कैसे होना चाहिए, और उन्हें छोटा सा बुक लिए थे, उस समय तो पत्ते थे, उसके ऊपर उन्हें थोड़ा नोट्स बना के आगे आगे जा रहे थे। ये मते दुई बाई गौड़ देश आइला गौड़ देश अनुपमेर गंगा प्राप्ति हाइला। जैसे गौड़ देश मतलब बंगाल पहुंचे तो क्या हुआ, अनुपम अपना शरीर त्याग कर दिए और रूप गोस्वामी पाद अनुपम के जो क्रियाकांड है अच्छी तरह से उन्हें पूरा किया। रूप गोस्वामी प्रभु पाशे करिला गमन प्रभुर देखिते तानार उत्कंठित मन। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बड़े उत्कंठता थे और बंगाल से हर साल बारिश के मौसम शुरू होने से पहले बंगाल से सब लोग वहाँ जगन्नाथपुरी जाया करते थे ताकि रथ यात्रा भी हो जाए और जगन्नाथपुरी में से चैतन्य महाप्रभु संगति प्राप्त हो जाए। तो क्या हुआ, अनुपम का मृत्यु का वजह से, शरीर त्याग करने की वजह से और क्रियाकांड में लुप्त होने की वजह से रूप गोस्वामी पाद उन भक्तों से मिल नहीं पाए। तो रूप गोस्वामी पाद बड़े दुखी हो गए, मुझे अकेले जाना पड़ेगा। ऐसा विचार करते हुए रूप गोस्वामी पाद जो है वो अकेले अकेले महाप्रभु से मिलने के लिए बड़े उत्कंठता से निकल पड़े बंगाल से। अनुपमेर लागी तनरा किच्चो विलंब होइला, विलंब करे से कोई उनको मिल नहीं पाया श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, वो अकेले गए। रात्रे स्वप्ने देखी एक दिव रूप नारी समक्ते आसिया आज्ञा दिला बहु कृपा करी। जब रूप गोस्वामी पाद भी जगन्नाथपुरी पहुँचने वाले हैं, पहुँचने से पहले कटक करके एक जगह है, उसके नज़दीक में एक पुर है, एक गांव है जिसका नाम है सत्यभामापुर। तो इस सत्यभामापुर में रात को रुके थे, उस समय रूप गोस्वामी के स्वप्न में एक बहुत सुंदर सी एक देवी प्रकट हुई और वो कहने लगी, देखो रूप गोस्वामी, तुम जो कृष्ण की लीलाओं को रचना कर रहे हो वो कृष्ण की लीलाओं का दो भाग बनाओ, एक भाग जो वृंदावन की लीलाओं को अलग करो और जो मथुरा द्वारका की लीलाओं को अलग करो, आप एक ही साथ दोनों लीलाओं का रचना मत करो। इसलिए कहा गया है अमार नाटक पृथक करिया रचना। दूसरी बार कहते हैं जो मेरा जो नाटक है अमार नाटक का पृथक, पृथक मतलब दूसरा, हाँ करचा मतलब दूसरे ग्रंथ में रचना करो। हमारा कृपाते नाटक होय बे विलक्षण। तो सत्यवामपुर में कौन आई थी, साक्षात सत्यवामा जी आई थी। सत्यभामा देवी आके रूप गोस्वामी के सपने में कहा कि मेरा कृपा से आपका जो नाटक जो है, यानी आपका जो नाटक का जो ग्रंथ है, ये बड़ा विलक्षण होगा। हाँ, मेरी कृपा से निश्चित रूप में पूरा होगा और विलक्षण होगा। स्वप्न देखी रूप गोस्वामी करिला विचार, विचार करने लगे रूप गोस्वामी कौन है। सत्य मामा आज्ञा पृथक नाटक करिबारे, सत्य मामा की आज्ञा है इसलिए मुझे एक अलग नाटक को रचना करना होगा उनके लिए, दोनों को अलग। व्रजपुरा लीला एकत्र करिया छे घटन, एक लीला में एक ग्रंथ में व्रजपुर का लीला है। दुई भाग करे ये वे करिनु रचन, दूसरी भाग में ये जो मथुरा और द्वारका का जी लीला है वो वर्णन करूंगा। आप सबको मालूम है कि रूप गोस्वामी पाद पहले एक ही ग्रंथ रचना करना चाहते थे, बाद में उन्होंने दो ग्रंथों की रचना की, एक है विदग्ध माधव, दूसरा है ललित माधव। विदग्ध माधव में व्रजपुर के लीला है, व्रज गोपियों का लीला है, कृष्ण का लीला है। और ये जो ललित माधव ग्रंथ जो है उसमें रूप गोस्वामी पाद ने भगवान का जो द्वारका और मथुरा की लीलाओं को उन्होंने वर्णन किया। और जल्दी जल्दी रूप गोस्वामी पाद भागते गाते महाप्रभु से मिलने की उत्कंठता से पहुँचे जगन्नाथपुरी। और जैसे जगन्नाथपुरी पहुँचे उन्होंने पूछा हरिदास ठाकुर का हट या वो कौन सी कुटिया में रहते हैं, तो सब लोगों ने कहा इधर रहते हैं। तो तुरंत गए हरिदास ठाकुर से मिलने। हरिदास ठाकुर से मिलने से बड़े आनंदित हो गए। हरिदास ठाकुर ने कहा रूप गोस्वामी का, मोरे प्रभु ये कैला, हाँ मेरे प्रभु महाप्रभु ने कहा था मुझे, अभी आप आने वाले हो, शीघ्र ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ आओ चैतन्य महाप्रभु अभी आने वाले हैं। जैसे ऐसी बातचीत हो रही थी उसी समय चैतन्य महाप्रभु पहुँचे, उपल भोग पहुँचे थे। जो उपल भोग जो है सुबह का भोग लेते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने आए तो तुरंत दोनों चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए। और हरिदास ठाकुर को जैसे सनातन गोस्वामी के समय भी ऐसे हुआ था, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को उठाया तो हरिदास ठाकुर ने तुरंत कहा देखो आपका रूप गोस्वामी पाद इधर हैं। तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को आलिंगन किया। आलिंगन करके कहते हैं हरिदास रूपलना प्रभु वसाइला एक स्थान कुशल प्रश्न इष्ट गोष्ठी कैला कथाक्षण। एक जगह बैठ के हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ क्षण बहुत समय के लिए वो दोनों कृष्ण कथा इष्ट गोष्ठी करने लगे। तब पूछने लगे एक दूसरे की वार्ता, सनातने रा वार्ता एवे गोसाई पूछिला रूप कहे तारा संगे देखा न हैला। तो चैतन्य महाप्रभु के ने पूछा सनातन गोस्वामी से आपका मुलाकात हुआ। तब रूप गोस्वामी ने कहा नहीं मैं सनातन गोस्वामी से मिल नहीं पाया क्योंकि मैं जब वृंदावन से निकल पड़ा बंगाल की ओर, मैं गंगा की तट के ऊपर से निकल पड़ा, तट से निकलता रहा, लेकिन सनातन गोस्वामी जो है मेन रोड से निकल पड़े इससे हमारा मुलाकात नहीं हुआ। और ये बात भी है कि रास्ते में जब बंगाल हम पहुँचे उधर अनुपम का भी मृत्यु हो गया, उन्होंने अपने शरीर त्याग किया। तो इस प्रकार इष्ट गोष्ठी संभाषण हुआ। अभी देखिए हम महाप्रभु का लीला में देखते हैं कि कितना सुंदर भक्तों के साथ संबंध है, संगति है। एक देखिए एक दूसरे से मिलते हैं तो कितना अच्छी तरह से एक दूसरे के हित के विषय में बातचीत करते हैं। तो ये अस्तित्व में वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे मिले खाली काम का बात करके निकल गए हैं, ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे के कुशलता पूछना, बैठना, कृष्ण के बारे में चर्चा करना, ये वैदिक सभ्यता है, ये पालन करना बहुत ज़रूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला का वैभव क्या है, उनका भक्तों से प्रेम और भक्तों के बीच में प्रेम, यही हमारी आंदोलन का वैभव है। ये बड़े बड़े मंदिर होना या बड़े भव्य प्रसाद का वितरण करना या महंगी महंगी पंडाल बनाना, ये सब चीज़ें वास्तविक वैभव नहीं है। ये हो और अच्छा है, लेकिन वास्तविक वैभव है भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम और भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम और भक्तों के बीच में आपस का जो प्रेम है, यही गौड़ीय सिद्धांत का वैभव है। भले हमारा सिद्धांत बहुत महान है, हमारे पास हरिनाम है, हमारे पास महान महान ग्रंथ हैं, तर्क शास्त्र हैं, सिद्धांत हैं और वेदांत सूत्र हैं, सब कुछ है, इससे भी परे एक ही है, कृष्ण को भक्तों से प्रेम, भक्तों का कृष्ण से प्रेम और भक्तों के बीच में जो प्रेम है, यही वास्तविक वैभव है। ये जहाँ है निश्चित रूप में भगवान प्रसन्न हैं। तो ऐसे श्री चैतन्य महापुरुष रोज आया करते थे। एक दिन श्री चैतन्य महापुरुष सारे भक्तों को लेके आए, आके सारे भक्तों को ऐसा बिठाए और रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर नीचे बैठे और चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त को कह रहे थे, देखो कौन है मालूम है, ये रूप गोस्वामी हैं। और रूप गोस्वामी का महिमा वर्णन करने लगे। सबार चरण रूप करिल वंदन, कृपा करी रूप सब कैला लिंगन। जैसे एक एक का परिचय, एक एक को रूप गोस्वामी के विषय परिचय दे रहे थे तो तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु गए और उनको प्रणाम करते। जैसे नित्यानंद प्रभु है, शिवानंद सेन है, अनेक अनेक महान भक्त हैं, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, सबको प्रणाम किए। और जैसे रूप गोस्वामी उनको प्रणाम किए तुरंत वो उठे और रूप गोस्वामी पाद को उठा के वो सब लोगों ने आलिंगन किया। अद्वैत नित्यानंद तुम्हारा दुई जन, प्रभु कहे रूप कृपा करा कहे मने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा किनको, अद्वैत आचार्य नित्यानंद को, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य मैं, मेरी आज्ञा है आप दोनों जो हैं रूप गोस्वामी की कृपा करो। तब तुम्हारा द्वारा कृपा यहारा हो तेज शक्ति, अगर आप कृपा करोगे उनको शक्ति मिलेगा आपकी शक्ति के द्वारा। याते विवर्ते प्राणेर कृष्ण रस भक्ति, इसके वजह से आपकी जो शक्ति देंगे रूप गोस्वामी क्या करने वाले, पूरा विश्व में ये जो कृष्ण रस भक्ति जो है उसका प्रचार करेंगे। गौड़िया उड़िया यथा प्रभु भक्तगण, सबार हैला रूप स्नेहरा भजन भजन। तो जितने भी उड़िया भक्त है, बंगाली भक्त है, सब लोग जो हैं रूप गोस्वामी से अत्यंत प्रेम करने लगे और रूप गोस्वामी भी उनसे अत्यंत प्रेम करने लगे। प्रतिदिन आसे रूपे करे न मिलन, मंदिर ये प्रसाद पाना दिना दुई जन। रोज श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद लेके आते थे और श्री रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर के साथ बैठ के कृष्ण कथा का चर्चा कर रहे थे। इष्ट गोष्ठी दुई सने करी कतक्षण, मध्यान्ह करे थे प्रभु करी लगमन। तो मध्यान्ह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु वो मध्यान्ह की जो लीला है यानी समुन्द्र में स्नान करना, ये लीला करने जाते थे। ये मत प्रतिदिन प्रभु व्यवहार, प्रभु कृपा पान रूपे आनंद अपार। रूप गोस्वामी का अपार आनंद हो रहा था, रोज चैतन्य महापुरुष से मिलके बड़े आनंद आ रहा था। भक्त गणा लेना करीला गुंडी चमन मार्जन, आए तोटा आसे कैला व्यवन भोजन। एक दिन क्या हुआ, अभी रथ यात्रा आ रहा है, आने से पहले गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है, सब भक्तों को लेके श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन किया। मार्जन करने के बाद जो गुंडीचा मंदिर मार्जन, अभी गुंडीचा मंदिर जाएंगे, गुंडीचा मंदिर सामने समझ लीजिए, थोड़ा सा राइट साइड में एक छोटा सा गली है, उधर उस जगह को आई तोटा कहा जाता है। उधर एक गौड़िया मठ भी है, पर हम पहली बार जब जगन्नाथपुरी गए थे, हमारा सौभाग्य था उधर आई तोटा में एक हफ्ता रुकने का मौका मिला था। उधर हमारा और सब परम सौ गया, तो उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था कौन महाराज क्या है। उस समय बीवी भक्ति वैभवपुरी महाराज जो प्रभुपाद के बड़े प्रिय मित्र हैं, मित्र थे, वो महाराज प्रवचन दे रहे थे चैतन्य लीला के ऊपर। सात दिन, दिन भर चार घंटा सुबह, चार घंटा शाम को आई तोटा में। ये शुरुआत पहली बार जगन्नाथपुरी में ऐसा सौभाग्य मिला। तो आई तोटा में चैतन्य महाप्रभु लेके गए, रूप गोस्वामी को बिठाए, बिठा के बड़े आनंद के साथ रूप गोस्वामी को कहने लगे, हाँ गोविंद द्वारा प्रभु राशेष प्रसाद पाईला, प्रेम मत्त दुई जन नाचिते लगिला। और बड़े कीर्तन चलने लगा और बड़े आनंद से नाचने लगे। रूप गोस्वामी को मिलके श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो हे रूप गोस्वामी, हे रूप सुनो, कृष्ण को वृंदावन से बाहर मत लेके जाना। कृष्ण को वृंदावन से बाहर मत लेके जाना। कृष्णेरा बाहिरे नहीं करिया चे व्रज है ते, व्रज छाड़ी कृष्ण कबू ना याने कहानी। व्रज छोड़ के कृष्ण एक क्षण भी बाहर नहीं जाते। इससे मेरा इच्छा ये है कि तुम ये जो कृष्ण लीला जो व्रज इंद्र नंदन कृष्ण का जो लीला है उसको अलग करो, और जो वासुदेव कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका अलग ग्रंथ की रचना करो। ने कहा कृष्णोन्यतो संभूतो यह पुनः स्योपि अतः परः वृंदावनम भरित्यज्य स कविम नैव गच्छति। ये श्लोक को कोट करते हैं जो रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत में इसको वर्णन किया है। इसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु ने कहा रूप गोस्वामी पाद को, वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छन्ति स्व क्वचिन नैव गच्छति। अलग अलग वर्षन है उसका, पादमेकं न गच्छन्ति स क्वचिन नैव गच्छति, एक कदम भी बाहर नहीं जाते। ये ते कहे महाप्रभु मध्यान्ह चलिया रूप गोस्वामी मने किच्छु विस्मित होइला। रूप गोस्वामी पाद के मन में जो है वो महाप्रभु कैसे जान गए, ऐसे विस्मित हो गए महा रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद के मन में ही था, उन्होंने ये नहीं कहा था मैं ड्रामा लिख रहा हूँ ये कर रहा हूँ, लेकिन महाप्रभु सबके हृदय जानते हैं, काशी भक्त के हृदय में क्या चल रहा है जानते हैं। तो ये बात बिना रूप गोस्वामी कहे पूछे तो सत्य बाबा ने कहा था दो ग्रंथ रखो रचना करो, वही बात को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा और महाप्रभु की का ये बात सुन के महा रूप गोस्वामी बड़े विस्मित हो गए। पृथक नाटक करिया सत्य बामन आज्ञा दिला, जानी लो पृथक नाटक करिते प्रभु आज्ञा हिला। जो आज्ञा जो सत्य बामा ने किया था तभी तो मैं समझता हूँ ये अस्तित्व में चैतन्य महाप्रभु का इच्छा थी, इसलिए सत्य बामा ने आके मुझे ऐसा कहा। तब उन्होंने पूर्वे दुई नाटक चलिते एकत्र रचन दुई भाग करे भी करिनो घतना। तो मैं दो ड्रामा रचना करने के लिए संकल्प लिया, अभी मैं दो अलग ग्रंथ ही कर दूंगा, ऐसा नहीं खाली दो नाटक करूंगा एक ही ग्रंथ में, इसका दो अलग नाम ही दे दूंगा दुई नादी। तो इस प्रकार ये ड्रामा के लिए उन्होंने और एक मंगलाचरण रचना किया। जैसे इस प्रकार की लीला चल रही थी गुंडीचा मंदिर के मार्जन के बाद रथ यात्रा हुआ। तो रथ यात्रा के समय आपको मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार बड़े धूमधाम से रथ यात्रा आयोजन करते हैं। वैसे देखा जाए भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा फेस्टिवल का आयोजन किया, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आयोजन हुआ फेस्टिवल है गोवर्धन पूजा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो आयोजन किया फेस्टिवल कौन सा है, वो है वो रथ यात्रा, स्वयं आयोजन करते थे पूरा रथ यात्रा का फेस्टिवल का आपने वर्णन सुना होगा अनेक अनेक बार। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब फेस्टिवल को आयोजन करते हैं, जब रथ यात्रा शुरू होती है उस समय महाप्रभु चार श्लोकों का उच्चारण करते हैं, बड़े भाव से दोनों भावों को ऊपर उठाते हुए बड़े भव्य तरीके से चार श्लोकों का उच्चारण करते हैं। और ये जो चार श्लोक है बड़े अद्भुत श्लोक है। जयति जयति देवो देवकी नंदयोयम्, जयति जयति देवो वृष्टिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। बाद में नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नाहं वंदे न च नरपतेर्नापि वैश्यो नौ शूद्रो, नाहं वर्णे न गृहपतेर्वनस्थो किंतु यतिर्वा, निखिल परमानंद पूर्णामृतार्धैर्गोपीपर्तु पदकमलयोर्दासदासानुदासः। जयति जननिवासो देवकी नंदनोयम्। ऐसा जो पांच चार श्लोक उच्चारण किया बड़े भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे। अचानक चैतन्य महाप्रभु पूरा एकदम कोने में जाके एक श्लोक को उच्चारण किया। ये श्लोक उच्चारण करते समय रूप गोस्वामी पाद ने उस श्लोक को सुना। ये श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक है, बड़ा रहस्यमय श्लोक है। जो रूप गोस्वामी जैसे उन्होंने सुना तुरंत रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये उच्चारण किया ये श्लोक सुन के तुरंत गए। रथ यात्रा समाप्त होने के बाद हरिदास ठाकुर जहाँ रहते वो कुटिया में गए। रूप गोस्वामी पाद ने और एक श्लोक रचना किया। चलिए ये दो श्लोक क्या है, महाप्रभु के द्वारा उच्चारण किया गया श्लोक है और रूप गोस्वामी पाद उस श्लोक के जवाब में और एक श्लोक को रचना किया, वो श्लोक क्या है वो जरा देखते हैं। सामान्य एक श्लोक प्रभु पढ़े रा कीर्तने, केना श्लोक पढ़े यहाँ कहे नाहे नाइक जाने। अस्तित्व में ये जो श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार उच्चारण करते बार बार गाते थे ये कोई नहीं जानता था, केवल एक ही व्यक्ति जानते थे वह स्वरूप दामोदर। सब एक स्वरूप गोस्वामी श्लोक के अर्थ जाने, स्वरूप दामोदर के अलावा और कोई श्लोक का अर्थ नहीं जानते थे। श्लोकानुरूप पद प्रभु के रास्वादने, ये श्लोक के अनुसार स्वरूप दामोदर तो उस श्लोक को सुन के एकदम बिल्कुल आस्वादन कर रहे हैं। हाँ वो और कोई समझ नहीं पा रहा है महाप्रभु क्या बोल रहे। असल में श्लोक जो है ये भौतिक एक ड्रामा का एक कोई ऐसा ड्रामा प्रसिद्ध ड्रामा है उस उड़िया भाषा में, और भी बंगाल में उड़िया में बड़ा प्रसिद्ध ड्रामा है, वो संस्कृत ड्रामा है, लेकिन भौतिक कवि के द्वारा लिखा हुआ है। उधर का एक श्लोक को महाप्रभु उच्चारण कर रहे हैं। अभी सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था यही क्या कर रहे हैं महाप्रभु। वे असलियत में जैसे आजकल फिल्म गाना आता है ना, वो समझ लीजिए वो टाइम का फिल्म गाना समझ लीजिए। और रथ यात्रा चल रहा है, इतने भाव विभोर हो के महाप्रभु जो सन्यासी हैं ये क्या श्लोक उच्चारण करे, सब लोग विस्मित हो गए। लेकिन ये स्वरूप दामोदर के अलावा इस बात को कोई नहीं जानते थे। लेकिन तब रूप गोस्वामी ने इसको सुना, तब ये श्लोक क्या है। यह कौमार हर ये वही वरस्ता ये व चित्र कस्पास ते चोन्मिलित सुहृदव्य प्रवृद्ध कदम्बानिल सा चैवांसि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विदौ रेवा रोदसि वेतसि तरुतले चेतसमुत्खंटते। तो ये श्लोक को उच्चारण किया। ये श्लोक का अर्थ ये सुनिए, हम जब जवान थे हम दोनों मिलके अनेकों अनेकों सुंदर मीठी मीठी बातें करते थे। अभी अनेकों समय के बाद अभी मुलाकात हुआ वापस, आप वही व्यक्ति हो मैं वही लड़की हूँ। हाँ, लेकिन जगह वही नहीं है। मैं हमारी इच्छा हो रही है रेवा रोदसी वेतसी तरुतले, रेवा नामक एक नदी है उसके तट पे जाएंगे, और जैसे हमारे गांव में हम मिले थे अभी शहर में आ गए वापस गांव जाएंगे। वेतसी तरुतले एक बड़ा वृक्ष है उसके नीचे चेतस समुत्कंठते, मेरे मेरे चेतना में मेरे चित्त में ये तीव्र इच्छा है और मैं बड़ी उत्कंठता से सुनना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो, चलो वापस हम गांव जाएंगे। तो ये बात सुन के सब लोग विस्मित हो गए, ये क्या हो रहा है इधर, महाप्रभु ऐसा कोई फिल्म का गाना गा रहे क्या है। तब रूप गोस्वामी बाद इसको समझे, तो रूप गोस्वामी बाद ने इसका जवाब देते बहुत सुंदर श्लोक रचना किया। प्रियस्यो यम कृष्ण सहचर कुरुक्षेत्र मिलितस तथा हम सराधा तदिदम उभयोस संगम सुखम तथाप्यंतकेलम मधुर मुरली पंचमजुषे मनो में कालिंदी पुरी नविपिना स्पृह्यति। रूप गोस्वामी पाद ने इस श्लोक को उन्होंने रचना किया। रचना करके उस जैसे कोई जैसा एक ताल पत्रिका या कुछ घास का छत रहता है ना, तो ये लिख के उन्होंने उसके अंदर डाल दिया और चले गए। रूप गोस्वामी पास समुद्र में नहाने के लिए गए, और जैसे समुद्र में नहाने के लिए गए तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आए। जब महाप्रभु आए तो उन्होंने देखा कुछ चीज़ रखा हुआ है, चलो देखता हूँ। हे नकाले प्रभु आइला तानारा मिलिते चाले श्लोक देखी प्रभु लागिला पढ़िते। श्री चैतन्य महा आगे आगे देखा उन्होंने क्या रखा लिखा निकाल के उन्होंने देखा, तो महाप्रभु देखे श्लोक पढ़े, श्लोक पढ़ी प्रभु सुखे प्रेमाविष्ट होइला। जैसे श्लोक पढ़े श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेमाविष्ट हो गए। हे नकाले रूप गोस्वाई स्नान करे आइला, उसी समय रूप गोस्वाई पाद स्नान करके वापस आए। जैसे स्नान करके आए प्रभु देखी, जैसे चैतन्य महाप्रभु देखे तुरंत दंडवत प्रांगणे पड़ीला, उसी प्रांगण में तुरंत चैतन्य उनके रूप को समय देखे श्लोक पढ़ रहे चैतन्य महाप्रभु और उन्होंने दंडवत किया। प्रभु ताने रे चापड़ा मारी कहते लागिला, तुरंत महाप्रभु जैसे रूप को समय दंडवत मार के उठे महाप्रभु उनके प्रेम से झापड़ मारा उनको। तान रे चापड़ा मारी कहते लागिला, उन्हें इस प्रकार कहने लगे, कहने लगे गुड़ा मोरा हृदय तुम्ही जाने ला क्या माने, क्या माने कैसे तुम गुड़ा जो एक मेरा हृदय जो एक बहुत गुड़ है वो जो गुड़ रहस्य है तुमको कैसे मालूम पड़ा। ये तक ही रूप कहले दृढ़ आलिंगन है, करने का तुरंत चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को आलिंगन किया। आगे से श्लोक लाना प्रभु स्वरूप दिखाई ला, चैतन्य महाप्रभु तो श्लोक लेके आए और तुरंत स्वरूप दामों को दिखाए, स्वरूप देखो देखो स्वरूप एरा परीक्षा लागी तानारा पूछिला, तुरंत पूछने लगे स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु से। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा मोरा अंतर्वार्ता रूपे जानी ला क्या माने, मेरे हृदय में जो अंतरवार्ता है, हृदय के जो अंदर की भीतर की बात है, मैं किसी को नहीं कहता हूँ। वो रूप गोस्वामी कैमन है, कैसे जान लिया? स्वरूप कहे जानी कृपा करी आचे आपने, आपने माँ पहले रूप गोस्वामी पर कृपा किया है। प्रयाग में, प्रयाग में रूप गोस्वामी का आलिंगन किया था ना, जब आलिंगन किए थे तब रूप गोस्वामी आपके हृदय में प्रवेश करके हृदय में क्या है वो सब जान लिए। तो ये इस बात को हम उच्चारण करते हैं, क्या है वो? श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले। ये क्या है मनोविष्टम? ये वाला श्लोक है जो रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या है ये श्लोक, इसका अर्थ क्या है? मनोविष्टम मतलब क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? रथ यात्रा, इसके लिए रथ यात्रा का तत्व को जानना होगा। चैतन्य महाप्रभु, उनका नवद्वीप में जन्म हुआ, नवद्वीप में अनेकों ने किया, उदार लीलाओं को वर्णन किया, वृंदावन आके वृंदावन में भी परिक्रमा किए, लेकिन जो वास्तविक चैतन्य महाप्रभु का जो वैभव है, वह उनका वास्तविक जो परिचय राधारानी क्या है, कौन है, उसका परिचय श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ दिया? जगन्नाथपुरी में दिया। तो प्रश्न ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु आखिरी 18 साल जगन्नाथपुरी में कौन क्यों निवास किया? तो जगन्नाथ जी क्यों महत्व, क्या महत्व जगन्नाथ जी का? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ जगन्नाथ? और खास करके वो भी रथ यात्रा है क्या? तो इसके विषय में थोड़ा सा विचार करना होगा भागवत से। कभी कुछ लोग पूछते हैं, और मेरा भी प्रश्न पहले बहुत साल पहले की बात था, बहुत भक्तों से पूछा था कि रथ यात्रा का हम बहुत चर्चा करते, लेकिन भागवत में रथ यात्रा का वर्णन कहाँ है? तो भागवत में रथ यात्रा का वर्णन आपको इधर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण और अन्य गोपियों का, व्रजवासियों का मुलाकात हुआ, अनेकों कृष्ण से और ग्वाल बालों से संवाद हुआ, यशोदा नंदमार संवाद हुआ, एक अलग स्थान में, रहस्य स्थान में, सीक्रेट स्थान में गोपियों के साथ संवाद हुआ। कृष्ण ने गोपियों को बहुत ज्ञान समझाया, ज्ञान दिया, देखो इस संसार में ऐसा है कि हम लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, और हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, ये संबंध जो है कुछ समय के लिए रहता है वो चले जाता है, इसलिए आपके लिए, आप जो है मेरे लिए रो मत। तैसा कृष्ण ने गोपियों को समझाया, तब गोपियाँ अपने दुखी होते हुए उन्होंने एक श्लोक को उच्चारण किया, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आहुश्चते नलिननाभपदारविन्दं योगेश्वरे हृदि विचिन्त्य मगाध बोधये के हम जुषामपि मनसी उदियात सदा नहा। उन्होंने कहा कि ये गोपियाँ कहती हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण, आप सोचते हो कि हम तो साधारण सी स्त्री हैं, कि हम जुषाम साधारण सी गृहस्थ में हम अनेकों अनेकों कार्यों करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो कि आहुश्चते नलिननाभ पदारविन्दम, ये आपके जो चरण कमल है ना, बड़े बड़े योगी लोग ज्ञान ज्ञान करते हैं, आहुश्चते नलिनावदारम में योगेश्वरी हृदि विचिन्त्य गाध बोधम, संसार कूप पतितोत्तर नावलंबम, आपका जो चरण कमल है, बड़े बड़े योगी लोग ध्यान करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग उसका वर्णन करते हैं, और संसार कूप पतितोत्तर नावलंबम, संसार कूप में जो पड़े हुए हैं ना, वैसे जो पतित हैं उनको उद्धार करने वाले आपके चरण कमल हैं, लेकिन बात यह है हम कौन है? साधारण सी स्त्रियां हैं, घर में घरेलू कार्यकलाप करने वाले हैं, इसलिए ये ध्यान व्याद हमसे नहीं हो पाएगा, आप हमको कुछ सरल रास्ता बताओ जिसके द्वारा हम आपको प्राप्त कर सकते हैं। ये जो श्लोक है ये बड़े नम्रता से सारे गोपियां वर्णन कर रहे हैं, लेकिन जब ज्यादा नम्र बनता है ना व्यक्ति, वो समझना चाहिए अंदर बहुत गुस्सा है। अति विनय, बड़ा ज्यादा विनय जो है वो चोर का लक्षण है। अभी गोपियां बाहर तो नम्रता से श्लोक को उच्चारण कर रही है, लेकिन श्लोक का श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं इसका ठीक उल्टा अर्थ है जो वास्तविक अर्थ है। गोपियां कहती हैं, अच्छा आपका चरण कमल के ऊपर कौन ध्यान करता है? बड़े बड़े योगी लोग ध्यान करते हैं ना, तो आप कहते हो तुम भी मेरे चरण कमलों के ऊपर ध्यान करो, हे कृष्ण तुम जानते हो तुम्हारे ऊपर हमारा ध्यान कैसे रहता है? ऐसा है कि अगर कोई बोले ना, हम चाहे ना भूलना चाहे तो भी नहीं होता हमसे। और वैसे लोगों को कहते तुम ध्यान करो, मान लो कि एक बच्चा है उसको पहला नंबर आ रहा है, माता पिता बोले हे पढ़ाई करो, तो बच्चा क्या सोचेगा, क्या बात करते हो, पहला नंबर आता है मुझे, 100 out of 100 आता है और बोलते पढ़ाई करो। हाँ, और ऐसे लोगों को जाके सुनाओ दूसरे लोगों को, ठीक है कृष्ण के ऊपर ध्यान करो, ये करो चरण कमल का ध्यान करो, लेकिन कृष्ण हम आपको भूलना चाहते लेकिन फिर भी भूल नहीं पा रहे, ये हमारी परिस्थिति है। आहुश्चते नलिन नाव पदारविंदम, जो आपका चरण कमल है ना, योगी लोग ध्यान करते हैं, वो केवल ध्यान करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका जो चरण कमल है हमारे स्तनों के ऊपर रहे। इतना हमारा ये है कि अगर थोड़ा सा भी उसका कुछ पत्थर की वजह से या कंकड़ की वजह से या कोई कांटे की वजह से थोड़ा सा आपको चोट ना लगे, इतना हम उसको ख्याल रखते हैं। आप कहते हो ध्यान करने के लिए, योगेश्वरे हृदि विचिन्त्य अगाध बोधेहि, अगाध बोधेहि, बड़े बड़े ज्ञान की बातें कहा ना, हमको ये ज्ञान की बातें मत सुनाओ। बात यह है, आपने कहा चरण कमलों के ऊपर ध्यान करने से मुक्त हो जाएंगे, और हमको बोलते हो ध्यान करो मुक्त हो जाओ। हाँ, मुक्त होने की उन लोगों की बात करो जो मुक्त नहीं है। योगेश्वरे हृदि विचिन्त्य अगाध बोधेहि, और अगाध बोधेहि, अनेकों अनेकों बड़े बड़े ज्ञानी हैं, योगियों को कहो आप ध्यान करके मुक्त हो जाओ। संसार कूप पतितोत्तर नावलंबम, ये सोचते हो कृष्ण हम संसार कूप में बड़े हुए हैं, संसार के कूप में नहीं, हम आपके विरह कूप में हैं। विरह कूप मतलब आपके विरह का जो सागर है उसमें हम डूबे हुए हैं। बाद में गोपियां कहती हैं जो इस विरह सागर में जो डूबा हुआ है ना, उनको चरण कमल का ध्यान करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप कभी मत कहना मेरा चरण को ध्यान करो आप उद्धार हो जाएगा, ये सब बातें किसी और को सुनाना। अभी तुरंत गोपियों ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, कहा गेहम जुषाम मतलब क्या है, घर चलो, अभी हमारा घर कहाँ है, वृंदावन चलो, ये घर नहीं है तुम्हारा, अन्य वेश अन्य देश, गेहम जुषाम अभी मनसी उदियात सदा नहा। ये हम दोनों के बीच में जो वास्तविक संबंध वो तभी होगा, वास्तविक प्रेम तभी होगा जब जगह भी वही हो। वृंदावन की महिमा गाते हैं, हे कृष्ण तुम वही कृष्ण हो, मैं वही राधा रानी हूं, लेकिन फिर भी जगह वो नहीं है, क्योंकि इधर घोड़े हैं, इधर हाथी है, मयूर नहीं है इधर। तुरंत राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और सीधा खींच के लेती गई वृंदावन। और ये बात चैतन्य महाप्रभु एक जैसे एक भौतिक ड्रामा का लीला से ऐसे कर रहे, लेकिन मन में क्या स्मरण हो रहा है, उनको वो लीला का स्मरण हो रहा है जहां राधा रानी बाहर से नम्रता बात कर रही लेकिन अंदर से बड़े क्रोध में कृष्ण को पकड़ के वृंदावन लेके जा रही है। इसी बात को रूप गोस्वामी पाद चैतन्य मनोभिष्टम ये श्लोक का अर्थ को थोड़ा कहना चाहता हूं। रूप गोस्वामी पाद ने यह श्लोक को उच्चारण किया, क्या श्लोक उच्चारण किया, प्रियस्योयम् कृष्ण सचरी कुरुक्षेत्र मिलितस् प्रियः सह अयम् कृष्णः। राधारानी कहती है श्लोक को, अस्तित्व चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण है लेकिन राधारानी के भाव में है, तो राधारानी के भाव मतलब राधारानी का भाव क्या ये वाला है, क्या भाव है, प्रिय सोयम कृष्ण सचरी कुरुक्षेत्र मिलितस्, तुम वही कृष्ण हो। जब राधा रानी कृष्ण से मिली कुरुक्षेत्र में, तथा हम स राधा तदिदम, मैं वही राधा रानी हूं, उभयो संगम सुखम, उभयो हम दोनों का जो संगम सुख है, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का संगम हो गया सुख है, होने पर भी संगम का सुख होने पर भी हम दोनों का मिलन का सुख होने पर भी कुरुक्षेत्र में, तथापि अंत केला मधुर मुरली पंचम जुषे, क्योंकि द्वारका कृष्ण के पास मुरली नहीं रहता है, वो त्रिभंग नहीं खड़े होते, तो राधा रानी का तुम्हारा मुरली कहाँ है, वेणु कहाँ है, वेणों के बिना हमारा लीला हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए तथापि अंत केला मधुर मुरली पंचम जुषस, मुरली का जो पंचम जुषा, ये पंचम जुषा बहुत टेक्निकल बात है, वो अभी चर्चा नहीं करेंगे, जो फिफ्थ नोट है, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनया स्पृह्यति, मनो में मेरे मन में ये जो रसकेली वार्ता, ये तभी रसकेली तभी हो पाएगा जब आप वापस वृंदावन चलोगे। राधा कृष्ण का मिलन होने पर भी अगर वृंदावन नहीं है तो मिलन मिलन नहीं माना जाता है, ऐसा राधा रानी कहती है। ये वृंदावन की महिमा है। श्रील प्रभुवानंद सरस्वती ठाकुर इस बात को कहते हैं, वृंदावन की महिमा का इंट्रोडक्शन देते हैं श्लोक में, कहते हैं कि राधा रानी भी है और कृष्ण भी है, दोनों का मुलाकात हुआ कुरुक्षेत्र में, होने पर भी लीला नहीं हुआ। क्यों? वृंदावन नहीं है। इसी बात को राधा रानी कहती है, मनो में कालिंदी पुलिना, कालिंदी तट में आओ तभी हो पाएगा। इसलिए तुरंत राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ के खींचते हुए लेके चले। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी का सर्वोच्च भाव ये कृष्ण को खींचते हुए वृंदावन लेके जाना, ये है श्री चैतन्य मनोभीष्टम। रूप गोस्वामी पाद ने श्लोक को जैसे वर्णन किया तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और गुड़ा मोरा हृदय तुम्हें जान ला, ये मेरे हृदय का बात जान लिए, इसलिए हम लोग ये श्लोक को उच्चारण करते, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। तब आगे प्रभु कहे यह अमाया प्रयागे मिलीला, योगाय पात्र जानी यहाँ न मोरा कृपा हैला। चैतन्य आपने कहा कि मैंने रूप गोस्वामी को देखा, ये योग्य पात्र है, इसलिए मैं उनको आलिंगन करके प्रयाग में उनको ये मेरे हृदय की जो बात है उनको मेरे कृपा उनको प्रदान किया। तब शक्ति संचारी अमी कैल नोपदेश तुम्हें कहते रसेरा विशेष। श्री चैतन्य महाप्रभु, रस का जो विशेषता है, मैं प्रयाग में जब मिला था श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को, तब मैंने ये शक्ति संचार किया। स्वरूप कहे यत श्लोक देखी लिनु तुम्हें कर याच कृपा तब न जानी लू। हाँ, तो ये जो विशेष श्लोक जो रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है, मैं तुरंत समझता हूँ कि ये तभी हो सकता है जब आपका कृपा उनके पर हो। तब स्वरूप दामोदर ने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, फले न फल कारणम मनुमीयते, जो फल के द्वारा फल का जो कारण है वो जान सकते हैं। ये जो रूप गोस्वामी जो रसास्वादन कर रहे, राधा कृष्ण रसकेली का वर्णन कर रहे हैं, ये तभी संभव है जब आपका कृपा हो। अब देखिए वास्तविकता में श्री राधा कृष्ण लीलाओं में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब चैतन्य महाप्रभु कृपा हो। इसलिए कहा गया है राधाष्टमी के समय हम ये भी ये भजन गाते हैं कि यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो राधारा महिमा प्रेम रसिमा जगत जानत के। राधा रानी का जो प्रेम का महिमा है वो जगत में कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं है तो। इसलिए प्रेम रसिमा जगत जानत के। इस बार चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास के समय सारे भक्तों के साथ अनेकों अनेक लीला करते रहे। चतुर्मास बीत गया, बंगाल में बंगाल के सारे वैष्णव जो हैं चतुर्मास के बाद चले गए, और एक दिन रूप गोस्वामी ऐसा ग्रंथ रचना कर रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु उनके रूप गोस्वामी पास आए। आने के बाद महाप्रभु ने पूछा कि रूप क्या लिख रहे हो? हाँ, तो तुरंत बाजू में बैठे सांभ्रमे दुई उठी दंडवत हैला, दोनों दंडवत के महाप्रभु ने पूछा तुम क्या लिख रहे हो, क्या पुनः लिखिया? बोली एक पत्र नीला, तुरंत एक पत्र लिए और वो पत्र को पढ़ने लगे। वो पत्र के अंदर रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा था। महाप्रभु श्लोक को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते रूप गोस्वामी के जो अक्षर है हैंड राइटिंग है वो देख के महाप्रभु कहते हैं, श्री रूपेराक्षर ये न मुक्तर पंक्ति, मुक्तर पंक्ति यानी मुक्तों का पंक्ति जैसा है रूप गोस्वामी की हैंड राइटिंग। प्रीतः न करे न प्रभु अक्षर स्तुति, एक एक अक्षर का जो वर्णन है चैतन्य महाप्रभु करने लगे, इतना सुंदर है। सही पत्रे प्रभु एक श्लोक एक देखिया पढ़ते श्लोक प्रेमाविष्ट होइला, ये पत्र का ये जो श्लोक है वो पढ़ के एकदम प्रेमाविष्ट हो गए, एकदम बिल्कुल जोर जोर से नाचने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक को पढ़ते। चलिए वो श्लोक क्या है देखते हैं, प्रादभुत श्लोक है। ತುಂಡೇ ತಾಂಡವಿನಿರತಿನ್ ವಿತನುತೆ ತುಂಡಾವಳಿ ಲಭ್ಯತೆ ಕರ್ಣಕ್ರೋಡ ಕದಂಬಿನಿ ಘಟಯತೆ ಕರ್ಣಾಭೃತೆ ಸ್ಪೃಹಾನ್ ಚೇತ ಪ್ರಾಂಗಣ ಸಂಗಿನಿಂ ವಿಜಯತೆ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾನಾಂ ಕೃತಿಂ ನೋ ಜಾನೇ ಜನಿತಾ ಕೃತಿಭೇರ್ ಅಮೃತೈ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ವರ್ಣದ್ವಯಿ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ವರ್ಣದ್ವಯಿ. ಬಡಾ ಅದ್ಭುತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಕೇತೆ ಹೇ ಕಿ ತುಂಡೇ ತಾಂಡವಿನಿರತಿಂ ವಿತನುತೆ ತುಂಡೇ ತಾಂಡವಿನಿರತಿಂ ವಿತನುತೆ ಚಾಹತೆ ಹೇ ಕಿ ಜಬ್ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಮೇರೆ ಮನ್ ಮೇ ಐಸಾ ವಿಚಾರ ಆತಾ ಹೇ ಕಿ ಮುಜೆ ಹಜಾರೋ ಹಜಾರೋ ಚಿಹ್ವಾ ಹೋ ಜಿಸ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ನಾಮ ಕೋ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರು. ವಿತನುತೆ ತುಂಡಾವಳಿ ಲಭ್ಯತೆ ಅನೇಕೋ ಅನೇಕೋ ತುಂಡಾವಳಿ ತುಂಡ ಮತ್ಲಬ್ ಜಿಹ್ವಾ ಮುಜೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಹೋ ಜಬ್ ಮೇ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಜಬ್ ವೋ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಕೋ ಮೇ ಸ್ವಯಂ ಸುನ್ತಾ ಹೂ ವಹಿ ನಾಮ ಕೋ ಮೇ ಸುನ್ತಾ ಹೂ ತೋ ಕರ್ಣ ಕ್ರೋಧ ಕದಂಬಿನಿ ಘಟಯತೆ ಜಬ್ ಕರ್ಣರಂಧ್ರೋ ಸೆ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ಕೆ ಜಬ್ ಮೇರೆ ಹೃದಯ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಜಬ್ ಕರ್ಣಾರ್ಬುದೇಯ ಸ್ಪೃಹಾನ್ ಮೇರಿ ಸ್ಪೃಹ ಹೋತಿ ಹೇ ಮೇರಿ ಇಚ್ಛಾ ಹೋತಿ ಹೇ ಕಿ ಮುಜೆ ಅರ್ಬುದೆ ಕರೋರೋ ಕರೋರೋ ಕಾನ್ ಹೋ ಚೇತ ಪ್ರಾಂಗಣ ಸಂಗಿನೀಂ ವಿಜಯತೆ ಜಬ್ ವೋ ಕಾನೋ ಸೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾಮೃತ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ತಾ ಮೇರೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಚೇತ ಪ್ರಾಂಗಣ ಸಂಗಿನೀಂ ವಿಜಯತೆ ಜೇಸೆ ಮೇರೆ ಚಿತ್ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾನಾಂ ಕೃತಿಂ ಮೇರೆ ಸಾರೆ ಜೋ ಇಂದ್ರಿಯಾ ಹೇ ವೋ ಸಬ್ ಪೂರ್ಣ ತರೀಕೆ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ ವೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಸಬ್ ಸ್ತಬ್ಧ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ ಔರ್ ಮೇರಾ ಜೋ ಮನ್ ಹೇ ವೋ ಕಿಸಿ ಕೇ ಊಪರ್ ಧ್ಯಾನ್ ನಹೀ ರಹತಾ ಕೇವಲ ವೋ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಕೇ ಊಪರ್ ಹೀ ಧ್ಯಾನ್ ರಹತಾ ಹೇ ಮೇರೆ ಸಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯಾ ಅಪ್ನಾ ಕಾಮ ಕರ್ನಾ ಬಂದ್ ಕರ್ ದೇತೆ ಹೇ ತೋ ಆಗೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಖರಿ ಲೈನ್ ಮೇ ಕೇತೆ ಹೇ ಇಸ್ಲೇ ನೌಜಾನೆ ಜನಿತ ಕಿಯಾಬ್ಧಿರ್ ನೌಜಾನೆ ಮೇ ಜಾನ್ತಾ ನಹಿ ಹೂ ಯೇ ಜೋ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ವರ್ಣದ್ವಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ಮೇ ದೋ ವರ್ಣ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಭಿ ಇಸ್ ಬಾರ್ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕೆ ಸಮಯ ಮೇ ಏಕ್ ಭಕ್ತ ಐಸೆ ಜಪ್ ಕರಾತಾ ಹೈ ಕಭಿ ಕಭಿ ಹೋತಾ ಹೈ ನಾ ಜಪ್ ಕರತಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಯಾ ಕರ ಬೋಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ್ ಕರ ಮೈ ಜಪ್ ಕರ ಬೋಲೆ ಕ್ಯಾ ಜಪ್ ಕರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ್ ಕರ ಉಮೇ ಹರೇ ರಾಮ ಭೀ ಹೇನಾ ರೋಜ ಟೈಮ್ ಹೋರ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಕರ ಬೋಲ ಠೀಕ ಬೋಲ್ ಜಾ ಬಾಕಿ ಸಾಹ ಬೋಲ್ ಜಾ ಕೃಷ್ಣ ಜೋ ಬೋಲ್ ರೇ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಲೂಮ ಹೇ ಕ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಜೀ ಕ್ಯಾ ಅರ್ಥ ಹೇ ಬತಾಯೇ ಉಸ್ನೆ ಪೂಛಾ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ನಾಮ ಕಾ ಅರ್ಥ ಬತಾವು ಸಿರ್ಫ ನಹೀ ಮಾಲೂಮ್ ತೋ ಮೇನೆ ಸೋಚಾ ಠೀಕ ಐಸೆ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ಮೇರೆ ಮನ್ ಮೇ ಆಯ ವೈಸೆ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ನಹೀ ಮಾಲೂಮ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಕಾ ಅರ್ಥ ತೋ ಮೇನೆ ಸೋಚಾ ಕಿ ಇಸ್ ಬಾರ್ ಜಬ್ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೋ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ನಾಮ ಕೇ ಊಪರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕಿಯಾ ತೋ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಶತ್ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಭೂವಾಚಕ ಶಬ್ದ ನಶ್ಚ ನಿವೃತ್ತಿ ವಾಚಕ ತಯೋರೈಕ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಹಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೇ ಭಕ್ತಿ ತೋ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ನಾಮ ಕಾ ಅರ್ಥ ಮಾಲೂಮ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಈ ಅರ್ಥ ವರ್ಣನ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ ಕಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ ಜಿಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೇ ಯೇ ಜೋ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ವರ್ಣದ್ವಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಭೂವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಕೃಷಿರ್ ಭೂವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೇ ಸರ್ವಾಕರ್ಷಕ ಕೃಷ್ಣ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೇ ಔರ್ ನಶ್ಚ ನಿವೃತ್ತಿ ವಾಚಕ ನ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೇ ಜೋ ಸಬ್ಕೋ ಆನಂದ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಕೃಷ್ಣ ಐಸ ಹೇ ಸಬ್ಕೋ ಆಕರ್ಷಿತ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಔರ್ ಸಬ್ಕೋ ಆನಂದ ದೇತೆ ಲೇಕಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೊ ಹೇ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಕೆ ವಸ್ತುವೆ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಕೆ ಲೋಕ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಭೀ ಆಕರ್ಷಣ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಹೇ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇ ಕಿ ನೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಜೋ ಗುಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೇ ಅಂದರ್ ಭೀ ಹೇ ಲೇಕಿನ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಯೇ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೇ ಜೊ ಆಕರ್ಷಿತ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಜೊ ಶಕ್ತಿ ಹೇ ಆಕರ್ಷಿತ ಜರೂರ್ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಕೆ ಜೊ ಲೋಕ ಹೇ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಕಿ ವಸ್ತುವೆ ಹೇ ಘರ್ ಹೇ ಸಂಸಾರ ಹೇ ಪರಿವಾರ ಹೇ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇ ಪುರುಷ ಹೇ ಬಚ್ಚೆ ಹೇ ಆಕರ್ಷಿತ ಜರೂರ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಲೇಕಿನ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಉನ್ಮೇ ಸೇ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇ ಈ ಅಂತರ್ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಕರ್ಷಿತ ಕರ್ಕೆ ಆನಂದ ದೇತೆ ಹೇ ಯೇ ವಸ್ತು ಆಕರ್ಷಿತ ಕರ್ಕೆ ದುಃಖ ದೇತೆ ಹೇ ಈ ಅಂತರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸಿ ಬಾತ್ ಕೋ ಥೋಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೇತೆ ಹೇ ನೌ ಜಾನೆ ಜನಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಅಮೃತೈ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ವರ್ಣದ್ವಯಿ, ಕೃಷ್ಣೇತಿ ವರ್ಣದ್ವಯಿ, ಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಯೇ ಜೋ ಶಬ್ದ ಹೇ ವರ್ಣ ಹೇ, ಇನ್ ದೋನೋ ದೋ ಶಬ್ದ ಮೇ ಕೃಷ್ ಔರ್ ನಾಮ್ ಹೇ, ಕೀ ಕಿತನಾ ನಾ ಜಾನಿ ಮೇ ಜಾನ್ತಾ ನಹೀ ಹೂ, ಅಮೃತೈ ಅಮೃತೈ ಕಿಯಾಬ್ ಧೇರ್, ಓ ಅಮೃತ ಕಾ ಕಿತನಾ ಬಡಾ ಸಾಗರ ಹೇ, ಕಿಯಾಬ್ ಧೇರ್ ಉಸ್ಕಾ ಜೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇ, ಕಿತನಾ ಗಹರಾ ಯೇ ಅಮೃತ ಕಾ ಸಾಗರ, ಕಿತನಾ ಗಹರಾ ಹೇ, ಕಿತನಾ ಲಂಬಾ ಹೇ, ಕಿತನಾ ಚೋಡಾ ಹೇ, ಮೇ ಜಾನ್ತಾ ನಹೀ ಹೂ. ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ, ಬಡಾ ಅದ್ಭುತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ. ಜೋ ಲೋಕ ಅಸ್ತಿತ್ ಮೇ ಥೋಡಾ ಸಾ ನಾಮ ಕೋ ಅಚ್ಚಾ ಜಪ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೇ, ನಾಮ ಮಹಿಮಾ ಕೋ ಗಾತೆ ಹುವೆ ಜಪ್ ಕರ್ನೆ ಸೇ ಔರ್ ಅಚ್ಚಾ ರಹತಾ ಹೇ, ಶ್ಲೋಕ ಕೋ ಆ ಸ್ಮರಣ ಜರೂರ್ ಕರ್ ಸಕತೆ ಹೈ, ಅಗರ್ ಯಾದ ನಹೀ ಹೋ ಪಾತಾ ಹೈ ತೋ ಕಮ್ ಸೇ ಕಮ್ ಇತನಾ ತೋ ಯಾದ ಕೀಜಿಯೆ. ಚಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲಾ, ತುಂಡೇ ತಾಂಡವೆ ನಿರತಿಂ ವಿತನುತೆ ತುಂಡಾವಳಿ ಲಭ್ಯತೆ. ತೋ ರಘು ಸಾಹಿ ಬಾತ್ ಕಹತೆ ಹೇ ಕಿ ಮುಜೆ ಜಬ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ತಾ ಹೂ, ಮುಜೆ ಐಸಾ ಲಗ್ತಾ ಹೇ ಕಿ ಹಜಾರೋ ಹಜಾರೋ ಜಿಹ್ವಾ ಹೋ. ದೂಸರಾ ಜಬ್ ಉನ್ಕಾ ನಾಮ ಕೋ ಸುನ್ತಾ ಹೂ ತೋ ಮುಜೆ ಐಸಾ ಲಗ್ತಾ ಹೇ ಕಿ ಅರ್ಬೋ ಅರ್ಬೋ ಮುಜೆ ಮೇರೇ ಕಾನ್ ಹೋ. ಔರ್ ಜಬ್ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಕಾ ಶ್ರವಣ ಕರ್ಕೆ ಜಬ್ ಹೃದಯ ಮೇ ಧಾರಣ ಕರ್ತಾ ಹೂ ನಾಮ ಕೋ, ಮುಜೆ ಐಸಾ ಲಗ್ತಾ ಹೇ ಕಿ ಸಾರಾ ಜೋ ಇಂದ್ರಿಯಾ ಹೇ ವೋ ಸ್ತಬ್ಧ ಹೋ ಗಯಾ ಹೇ. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಕೃತಿಂ ವಿಜಯತೆ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಕೃತಿಂ, ಸಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕೇ ಓಪರ್ ವಿಜಯ ಕರ್ ಲೇತಾ, ಯಾನಿ ಸಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜೊ ಹೇ ಅಪ್ನಾ ಅಪ್ನಾ ಕಾರ್ಯ ಬಂದ್ ಕರ್ ದೇತಾ ಹೇ. ಚೇತ ಪ್ರಾಂಗಣ ಸಂಗಿನೀಂ ವಿಜಯತೆ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಕೃತಿಂ, ನೋ ಜಾನೇ ಜನಿತ ಕೃತಿಭಿರ್ ಅಮೃತೈರ್ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ವರ್ಣದ್ವಯಿ. ಅವ್ರು ಜೈಸೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಶ್ಲೋಕ ಪಡ ಭಾವವಿಶ್ ಹೋಗೆ, ಅವ್ರು ತುರಂತ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಶ್ಲೋಕ ಸುನಿ ಹರಿದಾಸ ವೈಲಾ ಉಲ್ಲಾಸಿ, ಜೊತೆ ಬಾಜು ಮೇ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ತೆ ಸುಂತೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಏಕದಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತ ಹೋಗೆ. ನಾಚೆ ಲಗೆ ಶ್ಲೋಕರ ಅರ್ಥ ಪ್ರಶಂಸಿ, ನಾಚನೆ ಲಗೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ನಾಚತೆ ಹುವೆ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಗಾತೆ ಹುವೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕರನೆ ಲಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಮೇರ ಮಹಿಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಧು ಮುಖೆ ಜಾನಿ, ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಹತೆ ಹೇ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಕಾ ಮಹಿಮಾ ಜೊ ಹೇ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸುನಾ ಹೂ, ಸಾಧುವೋ ಕಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಭಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಕಾ ಮಹಿಮಾ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸುನಾ ಹೂ. ನಾ ಮೇರ ಮಧುರಿಯಾ ಚೆ ಕಹಾ ನಹಿ ಶುನಿ, ಈ ನಾಮ ಕಾ ಜೊ ಮಧುರಿಮಾ ಹೇ, ಯೇ ಜೋ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನೆ ಜೊ ರಾಮ ಕಾ ಮಧುರಿಮಾ ಹೇ, ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಜೊ ವರ್ಣನ ಕಿಯೇ ಹೇ, ಮೇನೆ ಆಜ ತಕ್ ನಾ ಕೋಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಪಡಾ ಹೇ ನಾ ಕೋಯಿ ಸಾಧು ಕೆ ಮುಖ ಸೆ ಸುನಾ. ಯೇ ಕೌನ್ ಕಹತೆ ಹೇ? ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಹತೆ ಹೇ. ತಬೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ದೂನಿ ಕರಿ ಆಲಿಂಗನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರಿತೆ ಸಮುದ್ರೆ ಕರಿಲ ಗಮನ್. ತಬ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೋ ಆಲಿಂಗನ್ ಕಿಯೇ, ಔರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆ ಸಮಯ ಜಾಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರೋಜ್ ದುಪಹರ್ ಕೆ ಸಮಯ ಜಾಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮೇ ನಹಾತೆ ಥೆ. ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಹೀ ತಾ ಔರ್ ಆಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮೇ ನಹಾಕೆ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಘರೋ ಮೇ ಜಾಕೆ ರೋಜ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿಮಂತ್ರಣ ಮಿಲ್ತಾ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಗೃಹಸ್ಥೋ ಕೆ ಘರ್ ಸೇ, ಓ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಘರೋ ಮೇ ಭೋಜನ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ತೇ ಥೆ, ಔರ್ ಆಕೆ ಥೋಡಾ ಸಾ ಆರಾಮ ಕರ್ತೇ ಥೆ. ಫಿರ್ ಶಾಮ್ ಕೋ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರ ಮೇ ಜಾಕೆ ಕೀರ್ತನ್, ರಾತ್ ಕೋ 9-10 ಬಜೆ ತಕ್ ಕೀರ್ತನ್, ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಗಂಭೀರ. ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾ ಯಹಿ ರುಟೀನ್ ಹೇ, ಸುಬಹ ಸುಬಹ ಉಠನಾ ಔರ್ ಸಬ್ ಸಬ್ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಸಬ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಜಾನಾ, ಜಾಕೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾನಾ, ಔರ್ ಉದರ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕಾ ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಸಾಥ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋತೆ ಸಮುದ್ರ ಮೇ ಸ್ನಾನ ಕರ್ನೆ ಜಾನಾ, ಔರ್ ಕೋಯಿ ಸ್ನಾನ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಗೃಹಸ್ಥೋ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಜಾಕೆ ಜೈಸೆ ಜೈಸೆ ಲೋ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕರ್ತೆ ಉದರ್ ಜಾಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ನಾ, 2-3 ಗಂಟಾ ಆರಾಮ ಕರ್ನಾ, 5-6 ಬಜೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಜಾಕೆ ಖೂಬ್ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ನಾ, ಜೈಸೆ 9-10 ಬಜ್ ಜಾತಾ ಹೇ ವೋ ಜಾಕೆ ಗಂಭೀರಾ ಮೇ ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ ರಾಮಾನಂದ ರಾಯ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಏಕದಮ್ ಗುಪ್ತ ಲೀಲಾವೋ ಕೋ ಕರ್ನಾ. ಯೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರುಟೀನ್ ಥಾ ರೋಜ್. ಅಭಿ ದುಪಹರ್ ಕಾ ಸಮಯ ಹುವಾ, ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಭಿ ದುಪಹರ್ ಕೆ ಸಮಯ ನಿಕಲ್ ಪಡೆ. ಅಭಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏಕ ದಿನ ಅಗಲೆ ದಿನ ಸಾರಂ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನಂದ ರಾಯ್ ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ್ ಉನ್ ಸಬ್ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ಲೇಕೆ ಕಾ ಪಹುಂಚೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಪಹುಂಚೆ, ಜಹಾ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಿ ಬೈಠೆ. ದುಯ್ ಶ್ಲೋಕ ಕಹಿ ಪ್ರಭುರ ಹೈಲಾ ಮನ ಸುಖ ನಿಜ ಭಕ್ತರ ಗಣ ಕಹೆ ಹನ ಪಂಚಮುಖ. ಮಹಾಪ್ರಭು ಈ ದೋ ಶ್ಲೋಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಾ ಲಿಖಾ ಈ ದೋ ಶ್ಲೋಕ ದೇಖೆ ಇತನಾ ಆನಂದ ಹೋ ರೇ, ಅನಿತ ಆನಂದ ಮೇ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ, ಸಾರೇ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಮಹಿಮಾ ಕೋ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ನೆ, ಸಬ್ ಭಕ್ತೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಾ ಮಹಿಮಾ ಕೋ ಯಾ ಉನ್ಕಾ ಗುಣಗಾನ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ. ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಮಾನಂದ್ರ ರಾಮಾನಂದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಿತೆ ಶ್ರೀರೂಪ ಗುಣ ದುನಾರ ಲಗಿತೆ ಕಹಿತೆ. ತಬ್ ದೋನೋ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಮಾನಂದ್ರಾಯ್ ಏಕ ತೋ ತತ್ವ ಕಾ ವಿಶೇಷಜ್ಞ ಹೇ, ರಾಮಾನಂದ್ರಾಯ್ ಜೊ ಹೇ वो रस का विशेषज्ञ है, दोनों रूप गोस्वामी पाद के सामने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछने लगे और रूप गोस्वामी पाद उसका जवाब देने लगे। खास करके सारा प्रश्न था कृष्ण का, जो राधा रानी अरण्य गोपियों के जो साथ लीलाओं के रस तत्व के विषय में था। रामानंद राय रस तत्व के शास्त्र, खास करके ड्रामा को बहुत पसंद करते हैं रामानंद राय। आपको मालूम है स्वयं रामानंद राय जो देवदासियां हैं उनको अपने हाथों से नहलाते थे, तेल से नहलाते थे और अच्छी तरह से उनको श्रृंगार करते थे, कपड़े पहनाते थे। कम से कम 4-5 घंटा रामानंद राय रोज जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करने वाले देवदासियों को श्रृंगार करते थे। महाप्रभु कभी कभी कहते थे कि रामानंद राय का ये जो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है वो सबको सीखने लायक है। तो ऐसे रामानंद राय रूप गोस्वामी नाटिका को रचन कर रहे करके उन्होंने बहुत टेक्निकल प्रश्न पूछे। एक एक प्रश्न का रूप गोस्वामी पाद ने ऐसा ऐसा सुंदर और अद्भुत जवाब लेने के लिए देने लगे। रूप गोस्वामी पाद इतना अद्भुत जवाब देने लगे, एक एक जवाब जो रूप गोस्वामी ने दिया है वो सारे श्लोक जो हैं विदग्ध माधव नामक ग्रंथ जिसके वर्णन में जिसके बारे में कहा था जो उसके उसके अंदर रूप गोस्वामी पाद ने रचना किया है। खास करके पूर्व राग क्या होता है और अनेकों अनेकों जो टेक्निकल बातें हैं जो हम अभी इधर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि ना हमको इतना ज्ञान है ना हम उसको आस्वादन कर सकते हैं। तब रूप गोस्वामी पाद ने ये सब चर्चा होने के बाद रूप कहे कहा ना तुम्हें सूर्योपन भास मुई कौन क्षुद्र ए न कतद प्रकाश। तो रामानंद राय ने कहा हे रूप गोस्वामी तुमको तो बहुत सारा ज्ञान है। तब रूप गोस्वामी बड़े नम्रता से कहते हैं यहाँ अस्तित्व में आप तो सूर्य के प्रकाश सूर्य जैसे हो और मैं एक क्षुद्र जीव हूँ। ये सूर्य का प्रकाश कभी कभी क्या करता है वो सारा जगत को प्रज्वलित करता है लेकिन रात के समय सूर्य नहीं होता है। उस समय ये जो जुगनू क्या बोलते हैं उसको जुगनू वो बड़ा हीरो बनता है। देखो मैं कितना प्रज्वलित कर रहा हूँ ध्रुव को साहब बोलते मैं तो जुगनू जैसा हूँ, अंधकार में मैं अपने आप को कुछ चीज़ें बता के सोच रहा हूँ। तुम्हारे आगे दास्यस्ते रे मुखा वादा व्याधना एता बोली नांदी श्लोक करीला व्याख्यान। इस प्रकार अनेकों अनेकों चर्चा हुआ। ये रूप गोस्वामी पाद के विषय में हमने चर्चा की है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु डोल यात्रा के बाद की बात है। रूप गोस्वामी उधर जगन्नाथपुरी में 10 महीने तक रुके और चैतन्य महाप्रभु ने कहा रूप गोस्वामी पाद को अभी आप वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके सनातन गोस्वामी आप दोनों मिलके रचना करो, शास्त्रों की रचना करो और खास करके ये जो ग्रंथ हैं बत्रसामर सिंधु की रचना करो। जो वैष्णवों की स्मृति होगी आगे भविष्य में आने वाले जितने भी भक्त हैं उनको एक मार्गदर्शन होना चाहिए, गौड़ियों को मार्गदर्शन होगा अपने दिनचर्या कैसे बिताएं। उसके लिए उन्होंने बत्रसामर सिंधु नामक ग्रंथ को बताया। अभी रूप गोस्वामी पास जैसे वृंदावन आए ओ चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए वैसे ग्रंथों की रचना तो कर ही रहे थे और उनका और एक आज्ञा था जो विग्रह जो है उनको पुनस्थापन करना। रूप गोस्वामी के जो प्रिय विग्रह हैं राधा गोविंद जी, राधा गोविंद जी को ढूंढने के लिए रोज रूप गोस्वामी व्रज में परिक्रमा करते थे। व्रज में परिक्रमा करते सारे व्रजवासी पूछते थे आपको मालूम है ये राधा गोविंद जी कहाँ हैं, राधा गोविंद जी कहाँ हैं। वैसे 2 साल बहुत चर्चा बहुत ढूंढने के बाद रूप गोस्वामी ने सोचा कि अभी क्या फ़ायदा है मेरा जीवन जीने का, क्या फ़ायदा अगर मैं महाप्रभु की आज्ञा को पालन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि भगवान मेरे से संतुष्ट नहीं इसलिए वो प्रकट नहीं हो रहे। ऐसा उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँ करके वंशीवट में गए। तो वंशीवट के उस समय वंशीवट के नज़दीक में यमुना बहती थी, सोचा उधर जाके मैं अपना आत्महत्या कर लूँ, मैं कूद जाऊँगा। उस समय एक छोटा सा बालक आया आके कहा ये गोसाई क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अभी हमको राधा गोविंद जी नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं। तो बालक ने कहा कि आप सब लोग जहाँ रोज मिलते हो ना, एक जगह है जिसका नाम है योगपीठ, वृंदावन का योगपीठ जो है उसको गोमाटेला भी कहा जाता है। योगपीठ मतलब जहाँ सब वैष्णव आके बैठ के चर्चा करते थे। तो उधर एक गाय को देखता हूँ रोज वहाँ के एक जगह दूध दे के चले जाता है। तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा बड़ा आश्चर्य की बात है, चलो जाके देखते हैं। जाके देखा, जैसे उधर जाके गए रूप गोस्वामी पाद ये बच्चा गायब हो गया। तुरंत रूप गोस्वामी पाद ने कुछ लोगों को बुलाया, बुला कर बड़ा सावधानी से खुदाई करो। जैसे खुदाई करना शुरू की, खुदाई करते करते क्या हुआ, उधर वो राधा गोविंद का विग्रह प्रकट हुआ। तब रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, सारे वैष्णव को बुला के राधा गोविंद का प्रतिष्ठा किया। बाद में प्रतिष्ठा करने के बाद, बाद में जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य हुए बड़े राजा थे मान सिंह, उनकी सहायता से ये सात माने का बड़ा सा मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। वैसे तो कराने के लिए रूप गोस्वामी पाद के सामने पूरा नहीं हुआ मंदिर, बाद में जीव गोस्वामी पाद के समय पूरा मंदिर पूर्ण हो गया था। तो इस प्रकार राधा गोविंद जी का प्राकट्य हुआ। और उस समय सारे गोस्वामी, जैसे हमने सनातन रूप को विषय में चर्चा किया, एक एक गोस्वामी आने लगे। सबसे पहला गोस्वामी सना रूप सनातन के बाद आए, वो है लोकनाथ गोस्वामी। वो चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को कहा था कि नवद्वीप में ही कहा था, आप चले जाओ वृंदावन जाओ संन्यास लेने से पहले, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को मालूम था मेरी माँ सहन कर लेगी मेरी संन्यास लेना, संन्यास लेने की वार्ता सुन के मेरी माँ भी सहन कर लेगी, मेरी पत्नी भी सहन कर लेगी, जी लेंगे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी लेंगे नहीं जी पाएंगे। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी को कहा, उन स्पष्ट रूप में कह दिया चैतन्य महाप्रभु, आप वृंदावन जाओ। उन्होंने कहा क्यों जाओ? ने कहा कि मैं जानता हूँ आप जी नहीं पाओगे क्योंकि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। तो लोकनाथ गोस्वामी एकदम घबरा गए, ने कहा कि आप प्रभु है क्या करें, मेरी आज्ञा तुम जाओ। तो लोकनाथ गोस्वामी गए। इसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वापस अनेकों अनेकों ढूंढने के लिए गए, दक्षिण में गए, इधर की अलग अलग जगह, लेकिन महाप्रभु मिले नहीं। तो वापस वो आए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ में, रूप सनातन के साथ में लोकनाथ गोस्वामी रहने लगे। और बाद में नेक्स्ट आए गोपाल भट्ट गोस्वामी, उसके बाद आए जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आए, उसके बाद आखिरी में जीव गोस्वामी पाद आए। असित में जीव गोस्वामी के विषय में मुझे आखिरी दिन लेना था, लेकिन उस दिन नहीं लूँगा क्योंकि आज जीव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है ना, आविर्भाव दिवस है, इससे थोड़ा सा मैं वो आखिरी दिन वाला जो जीव गोस्वामी आज चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी को साथ में चर्चा करना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लीलाएँ साथ में हो, क्योंकि रूप गोस्वामी के शिष्य जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी कौन है? जीव गोस्वामी कोई और नहीं है बल्कि वो उनके भतीजे हैं। आप सबको भी कहा था अनुपम या श्रीवल्लभा जो रूप सनातन के भाई हैं, जिनका मृत्यु बंगाल में हुआ था जब रूप गोस्वामी पाद जब बंगाल होते हुए महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी जाने वाले थे, तो उनके पुत्र हैं। जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रूप सनातन और श्रीवल्लभा वो पहुँचे थे रामकेली, रामकेली गांव में जब पहली बार मुलाकात हुआ रूप सनातन और अनुपम का महाप्रभु के साथ, उस समय अनुपम भी उपस्थित, अनुपम के जो पुत्र हैं जीव गोस्वामी भी, वो भी उपस्थित था। उस समय छोटे से बालक करीबन 4 साल या 5 साल का बालक था, तब उन्होंने दूर से ये सब दृश्य को देखा था। कैसे उनकी जो क्या बोलेंगे चाचा बोलेंगे, हाँ दोनों चाचा है ना, रूप सनातन वो कैसे महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, महाप्रभु किस प्रकार उनके सर के ऊपर चरण रख रहे हैं और किस प्रकार कीर्तन चल रहा है, सारा दृश्य एक प्रकार के पिक्चर के रूप में एक बच्चे के मन में बैठ गया था। तब महाप्रभु का भी कृपा उनको प्राप्त हुआ। तो ये छोटा सा बालक जब वापस गांव गया तब उनको मालूम पड़ा कि सारे घटना घटने में थोड़ा सा बड़े होते होते सबको मालूम पड़ा, उनको मालूम पड़ा कि उनके पिता का मृत्यु हुआ, तब से रोज रोना शुरू किया। वो केवल उनका एक ही आंसू, दिन भर रात भर रोते थे। किसके लिए रोते थे? महापुरुष से कब मिलूं, महापुरुष से कब मिलूं। महाप्रभु के लिए उनका विरह भावना जागृत हुई जैसे उनका पिता का मृत्यु का खबर मिला। आप बोलोगे कि पिता का मृत्यु का खबर मिलता है तो पिता के लिए रोना चाहिए। तभी ये बच्चा, अभी बच्चा मतलब थोड़ा सा अभी युवक हो गए, एकदम 14-15 साल के हुए, तब महाप्रभु के लिए रो रहे क्योंकि बचपन से कृष्ण बलराम का सेवा करते थे, कृष्ण बलराम के विग्रहों को सेवा करते थे जीव गोस्वामी। तो कभी एक बार सपने में ऐसा हुआ उनके कृष्ण बलराम के विग्रह से नित्यानंद प्रभु बलराम से प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रकट हुए। तो ये दृश्य देखे और आश्चर्यचकित हो गए। तो स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद प्रभु मेरा ये जो जीव गोस्वामी है, ये जीव है, मैं तुमको सौंप रहा हूँ। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा ठीक है, हे जीव आज से तुम महाप्रभु का सेवा करना। तो ये शब्द स्वप्न में देख के एकदम जीव गोस्वामी एकदम और भाव विभोर हो गए। तो ऐसे ऐसे अनेकों अनेकों बचपन की घटनाएं हैं, लेकिन जब से चैतन्य महाप्रभु विरह में जब रोने लगे तो महाप्रभु ने कहा स्वप्न में आके, अभी तुम जाओ, जाके नित्यानंद प्रभु है, मैं तो अभी मेरी लीलाओं को संपन्न कर दिया हूँ, नित्यानंद प्रभु से मिलो नवद्वीप में। अभी घर में क्या बोलेंगे, घर में उन्होंने कहा अभी मैं अपना गांव जा रहा हूँ। देखिए नाव में जैसे बैठे नाविक को कहा तुम मुझे नवद्वीप लेके चलो। तो वैसे तो बहुत अमीर परिवार के थे, क्योंकि अनुपम सब श्री वल्लभ वो बड़े 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 पोस्ट में थे। ये जो युवक है अभी बस कितना 15-16 साल की बात है, वो निकले, निकल के पहुँचे कहाँ, नवद्वीप। जैसे नवद्वीप पहुँचे जीव गोस्वामी पाद तुम नित्यानंद प्रभु को संगति प्राप्त हुआ। नित्यानंद प्रभु पूरा दंडवत प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु को उन्होंने लेके गए कहाँ, श्रीवास ठाकुर के साथ। श्रीवास ठाकुर भी बहुत वृद्ध हो चुके थे उस समय। नित्यानंद प्रभु ने सोचा मैं इनको जीव गोस्वामी पाद को परिक्रमा में लेके जाऊँगा, लेकिन उसके पहले इतना दूर से चलते चलते आए भोजन खिलाऊंगा करके श्रीवास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद को लेके गए योगपीठ चैतन्य महाप्रभु घर में। उस समय चैतन्य महाप्रभु की माँ सची माँ और विष्णुप्रिया देवी, चैतन्य महाप्रभु विरह में तो एकदम बिल्कुल ओक तो किसी बात ही नहीं करते थे, ऐसे स्तंभित हुए रहते थे। लेकिन जैसे ही छोटा सा ये जो युवक है जीव गोस्वामी को देखे, तुरंत उन लोगों को चैतन्य महाप्रभु का स्मरण हुआ। स्मरण होते ही सची माँ ने सुंदर पकवान बनाया। अस्तित्व में वो सची माँ का कोई होश ही नहीं था महाप्रभु का विरह में, लेकिन जीव गोस्वामी को देख के चैतन्य माँ को महाप्रभु का स्मरण हुआ और सुंदर बढ़िया सा पकवान बनाया। बनाने के बाद सब भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सची माँ और विष्णुप्रिया देवी दोनों अपना चरण को जीव गोस्वामी के सर के ऊपर रखे और नित्यानंद प्रभु के साथ में भेजे। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद को सबसे पहला नवद्वीप मंडल परिक्रमा में लेके गए, फर्स्ट नवद्वीप मंडल परिक्रमा। ये पहला नवद्वीप मंडल परिक्रमा में एक एक स्थान में महाप्रभु ने ऐसा किया। आप ये नवद्वीप दाम महात्म्य पढ़ेंगे उसके अंदर भक्तिनोद ठाकुर बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं किस प्रकार नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद को ये स्थान में ऐसा हुआ, महाप्रभु ने ऐसा लीला किया। जीव गोस्वामी हर जगह भाविभोर होके नित्यानंद प्रभु से वो सुन रहे थे। बाद नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दिया अभी तुम व्रज में जाओ। व्रज में जाओ क्यों, व्रज जाना चाहिए तुमको, क्योंकि महाप्रभु ने तुम्हारे परिवार वालों को ये वृंदावन दे दिया है। बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है नित्यानंद प्रभु का कि वृंदावन पूरा धाम जो है चैतन्य महाप्रभु ने किसको गिफ्ट किया है, यस गिफ्टेड टू यूअर फैमिली, यानी रूप सनातन और तुम्हारे भाई तुम्हारे पिताजी उनको गिफ्ट दे चुके हैं। इससे तुम्हारा अभी ये वास्तविक स्थान में वृंदावन जाओ, तुम उधर रह जाओ। इसलिए ऐसा कहा जाता है जो गौड़िया है ये वृंदावन जो है गौड़ियों का स्थान है। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन को गौड़ियों को दे दिया है। भले गवर्नमेंट के हिसाब तो हमारा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इट इज गौड़ियस। भले ही निम्बार के लोग अनेकों संप्रदाय के लोग आके वृंदावन धाम राधा रानी की जय कुछ भी कर ले, लेकिन वृंदावन को चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ियों को दे दिया है। इसके ऊपर बड़ा रसिक चर्चा होता है। कभी व्रज में गोवर्धन में साधुओं के साथ बैठोगे, कभी निम्बार के लोग आएंगे, एक गौड़ी आएंगे, एक वल्लभ वाले आएंगे, तो उसमें बैठ के बहुत खूब झगड़ा होता है, सिद्धांतिक झगड़ा होता है। कभी कभी मैं सुन लेता हूँ। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ लेकिन सुन लेता हूँ। कुछ विद्वान हैं तो वो लोग सिद्धांतिक बहुत झगड़ा करते हैं, गाली गलौज भी कर देते एक दूसरे के ऊपर। ऐसे ये जो व्रज की जो गाली है और गली है, ये दोनों व्रज की मधुरिमा को ढक देता है। जो ये दो चीज को देख लेता है और वो सोचता है कि अरे ये क्या है, तो व्रज की मधुरिमा कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। आपको व्रज की जो गाली है और गली है उसको थोड़ा नजरअंदाज करके जाना पड़ेगा। व्रज की मधुरिमा जाना है तो इधर रूप सनातन चिंतन ने कहा कि आपके जो माता आपके जो परिवार को दे दिए हैं तुम उधर जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम रास्ते में क्या करो, रास्ते में बनारस जाओ। बनारस में विद्यावचस्पति उनसे शिक्षा ग्रहण को, जो उस समय के बड़े विद्वान हैं। तो तो विद्यावधेश्वरी सारमठाचार्य के शिष्य थे और जीव गोस्वामी उधर गए और अनेकों अनेकों संस्कृत के और ज्योतिष के, न्याय शास्त्र के और छंद शास्त्र के सारे अनेकों प्रकार के शास्त्रों को उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद श्री जीव गोस्वामी पाद गए, जाके सबसे पहला सनातन गोस्वामी से मुलाकात हुआ। तुरंत सनातन गोस्वामी को प्रणाम किए जीव गोस्वामी पाद ने, प्रणाम किए सनातन गोस्वामी पाद, उनको उठाए, उन्होंने कहा मैं तुमको रूप गोस्वामी को सौंप देता हूँ। तो रूप गोस्वामी पाद को उन्होंने सौंप दिया। तब रूप गोस्वामी पाद के अंडर में जीव गोस्वामी पाद अनेकों अनेकों सेवा करने लगे। राधा गोविंद जी का सेवा करते थे और अनेकों अनेकों निम्न नम्र प्रकार के कार्य करते थे। जैसे रूप जीव गोस्वामी इधर व्रज में पहुंचे, सारे व्रज में अन्य अन्य जगह पे मालूम पड़ गया इतने प्रचंड विद्वान आए व्रज में। जैसे आए सब लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन इतना महान विद्वान होने पर भी रूप गोस्वामी पाद की इतना नम्र सेवा कर रहे थे। बर्तन धोना, झाड़ू मारना, ऐसी सेवा रोज किया करते थे। और रूप गोस्वामी पाद ग्रंथों की रचना करते थे, रचना करने के बाद एडिटिंग के लिए जीव गोस्वामी पाद को दिया करते थे। इस प्रकार कुछ दिन चला तो क्या हुआ, एक दिन एक बड़ा सा विद्वान आया रूप नारायण करके। उनका आदत था जहाँ जहाँ जाएंगे विद्वान साथ वो शास्त्रार्थ करेंगे, शास्त्रार्थ करने के बाद अगर हार गए उनको हरा के बोलेंगे लिख के दो मैं हार गया करके। तो उनके पास बड़ा बुक था, मीन्स मैं हार गया करके बहुत सारे फाइल लेके आते थे, फाइल लेके घूमते थे। फिर उनको मालूम पड़ा व्रज में बड़े प्रचंड विद्वान हैं रूप गोस्वामी, उनसे भी मैं सिग्नेचर लेता हूँ। तो आए रूप सनातन बैठे थे, वो आके उन्होंने कहा कि मैं अलग अलग जगह जाके शास्त्रार्थ करता हूँ, तर्क करता हूँ और मैं सिग्नेचर लेता हूँ। रूप सनातन ने कहा आप तो बड़े प्रसिद्ध विद्वान हो, आपको आपके साथ हम क्या तर्क कर सकते। तो उन्होंने कहा आप लिख के दो, हाँ लिख के दे देंगे ले लो। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही तर्क करेगा, उससे व्रज में कोई काम नहीं है, हम टाइम वेस्ट क्यों करना करके लिख के दे दिए वो लोग। तो बड़ा होशियार होते हुए जब जा रहा था, किसी ने उनको कहा आपने तो रूप गोस्वामी सनातन का चिट्ठी ले लिया है लेकिन जीव गोस्वामी का लिया है क्या। तो कौन है ये इधर का उनके शिष्य हैं, इससे प्रचंड विद्वान है, चलो उनका भी लेता हूँ। तब वो जीव गोस्वामी पाद के पास गए, देखो आपके गुरुओं ने बिना तर्क के चिट्ठी दे दिया, तुम भी दे देना। तब जीव गोस्वामी को रहा नहीं गया, मेरे जो गुरु हैं रूप सनातन को इतना सस्ता समझता है, मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ कहके पूरा जीव गोस्वामी को तर्क किया। तर्क में अनेक अनेकों शास्त्रों को ऐसा कोटेशन करते उनको परास्त कर दिया। परास्त जब किए तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी छुट्टी था ना, वो जीव गोस्वामी लेके वापस आए, देखिए मैं आपको वापस कर रहा हूँ, मैं मुझे सहन नहीं हो पाया कि इस प्रकार आपका अपमान कर रहा है। तो रूप गोस्वामी पाद को बहुत क्रोध आया, ने कहा हे जीव ये जो व्रज है ये माधुर मधुरिमा का स्थान है, ये तर्क का स्थान नहीं है। इतना हद तक कि सही सिद्धांत को स्थापना करने वाला तर्क है उसका भी ये स्थान नहीं है। अभी थोड़ा विचारणीय बात है, आप सबको ये स्टोरी मालूम है कि राधा गोविंद जी जयपुर गए है कि नहीं, जयपुर में राधा गोविंद जी है, क्यों गए, इसके पीछे एक बड़ा विशेष विचार है। विचार ये है कि हमारा जो वेदांत सूत्र है, आप सबको हमारे वेदांत सूत्र व्यास जी ने रचना किया, संप्रदाय तभी प्रमाणिक मानी जाती हैं जब वेदांत के ऊपर, वेदांत सूत्रों के ऊपर या भगवद्गीता के ऊपर, विश्व सहस्त्रनाम के ऊपर और या 11 जो उपनिषद है, प्रसिद्ध उपनिषद है उसके ऊपर व्याख्या हो तभी उस संप्रदाय को प्रमाणिक मानी जाती है। और गौड़िया लोग जो हैं वो भागवतम को ही मानते हैं, लेकिन रामानंदी संप्रदाय, जयपुर के जो रामानंदी संप्रदाय वो लोग उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप भागवतम को स्वाभाविक मानते हो भाष्य के रूप में, लेकिन आपका खुद का भाष्य होना चाहिए कि आपकी मान्यता है लेकिन आपका भाष्य कहाँ है बताइए। तो उस समय इतना हद तक कि रामानंदी संप्रदाय ने कहा कौन से शास्त्र में कहा है राधा कृष्ण का पूजा, केवल कृष्ण का अर्चना लिखा हुआ है, कृष्ण का मंत्र है, राधा रानी को जो है आप अलग करो। इतना हद तक अलग कर भी दिए थे राधा गोविंद जी का मंत्र। तब क्या करें, सारे जीव गौड़िया है वो सब खबर भेजे विश्वनाथ ठाकुर को। तो विश्वनाथ ठाकुर वृद्ध थे उस समय, उन्होंने कहा अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को आप दाखी देखो। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने उनको परास्त कर दिया, प्रास करने के बाद उन्हें राधा कृष्ण का उपासना का स्थापना करने गए तो लेगा कि आप पूजा नहीं कर सकते हो, क्यों आप प्रमाणिक संप्रदाय नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं हम मध्व संप्रदाय से जुड़े हुए, आप तो मध्व संप्रदाय को स्वीकार करो, आप अपने आप गोड़िया क्यों बोलते हो, आपका भाष्य दो। तब गोविंद जी से प्रार्थना किया बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने, प्रार्थना करते हुए गोविंद जी स्वयं उनको डिक्टेट किए ये लिखो करके 8 दिन में पूरा भाष्य जो रामानुजाचार्य को करीबन 40 साल लगा वेदांत के ऊपर भाष्य की रचना के लिए, मध्वाचार्य को जो 12 साल लगा वेदांत के ऊपर भाष्य लिखने के लिए, 8 दिन में बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने पूर्ण किया और प्रस्तुत किया। तभी गोविंद जी ने ये भाष्य की रचना किया बलदेव विद्याभूषण प्रभु के द्वारा, इसलिए बलदेव विद्याभूषण को नाम रख दिया गोविंद भाष्य। इसलिए आप भगवदगीता खोल के देखेंगे उसके अंदर प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में शुरुआत में लिखते हैं कि दिस भगवदगीता इज डेडिकेटेड टू बलदेव विद्याभूषण प्रभु हु हैज सच नाइसली ब्यूटिफुली रिटर्न गोविंद भाष्य। इतना सुंदर तरीके से गोविंद भाष्य रचना किया। अभी इतना आता कि अगर भगवान को भी वेदांत बोलना होगा ना, तर्कशास्त्र बोलना होगा ना, तो व्रज से बाहर जाना पड़ेगा। इसके वजह से गोविंद जी बाहर गए, क्योंकि उनको वेदांत को प्रकाशित करना था, वृंदावन में बैठ के थोड़ी ना वेदांत लिखेंगे। तो रूप गोस्वामी ने कहा ये तर्क का जगह नहीं है, जैसे तुम इधर से चले जाओ। तब वो उनको व्रज से बाहर मथुरा में जाना पड़ा। उनको कुछ समय के बाद वापस बुला लिया गया था, लेकिन बाद में और एक चीज हुआ। तो वल्लभाचार्य एक दिन वृंदावन में आए, रूप गोस्वामी से मिले। उस समय रूप गोस्वामी पर भक्ति रसामृत रचना कर रहे थे। वल्लभाचार्य बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, बड़े मान्यता था। अगर उनका कुछ अनुमोदन रहेगा, लोक की मान्यता रहेगी करके मैं भक्ति रसामृत लिख रहा हूँ, आप जरा उसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी दीजिए। तो वल्लभाचार्य कुछ श्लोकों को पढ़ रहे थे, बड़ा आनंद ले रहे थे, लेकिन ये श्लोक पढ़े वल्लभाचार्य तो ने कहा कि ये गलत है। तो बाद में जीव गोस्वामी पर बैठे, अभी उनका खून गर्म हो रहा है, मैं जो रूप गोस्वामी पाद लिखे उसके अंदर गलती करने गलती दिखाने की इतना हिम्मत नहीं, अभी अभी तो घटना हुई ना। तो शांत बैठे। तब रूप गोस्वामी पाद ने वापस सुन लिया, ठीक है आपने जो गलती दिखाया है वो मैं उसको सुधारूंगा। असियत में वो गलती जो उन्होंने दिखाया था, असियत में गलती था नहीं, लेकिन उन्होंने वो सोचा ये गलती है करके। वो क्या था, रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक लिखा था भक्ति रसामृत सिंधु में, यदा भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाच हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसके अंदर इस श्लोक के अर्थ ये हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, जब तक भुक्ति और मुक्ति का स्पृहा रहता है, यावत जब तक ये दो चीज का, भुक्ति मतलब आनंद को अनुभव करने का, मुझे वो चाहिए ये चाहिए, सुख की खोज रहता है, स्पृहा रहती है, और मुक्ति की स्पृहा रहती है, मुझे मुक्ति चाहिए, ये दो प्रकार के जो पिशाची, ये दो प्रकार की पिशाची यानी भूत है, जिसको भूत पकड़ लेता है वो अपना इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता है कि नहीं, हाँ अपना स्वाभाविक तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता। तो जब तक ये दो चीज रहती है हृदय में, तब तक भक्ति सुख से यात्रा खत्म अभ्युदय भवेत, भक्ति का सुख को कैसे अनुभव कर सकता है, ऐसा रूप गोस्वामी पाद ने लिखा। तो वल्लभाचार्य ने कहा ठीक है, भुक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति करना ये पिशाची है, लेकिन मुक्ति पिशाची थोड़ी ना होता है। शास्त्रों में मुक्ति का गुणगान किया गया है, हमारा जीवन का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना, लेकिन आपने मुक्ति को पिशाची कह दिया, ये ठीक नहीं है। तब रूप गोस्वामी पाद ने वापस लिया, ठीक है मैं इसको सुधारूंगा। तब कुछ समय के बाद प्रसाद साथ लेने के बाद जीव गोस्वामी पाद को कहा, रूप गोस्वामी ने बड़े वरिष्ठ वैष्णव हैं उनको छोड़ो, जैसे ब्रज के बाहर जैसे जा रहे थे रास्ते में जीव गोस्वामी पाद थोड़ा सा मुंह नीचे करे हुए थे। वल्लभाचार्य ने कहा कुछ संशय है कि आपका इतना हिम्मत रूप गोस्वामी पाद के द्वारा लिखा गया चीज के अंदर आप गलती दिखाते हो, तो हाँ गलत है। तब चलो बैठ के शास्त्रार्थ करने लगे जीव गोस्वामी पाद, अनेकों अनेकों शास्त्रों से इतना तर्क करते हुए वल्लभाचार्य को समझाए। वल्लभाचार्य ने सोचा अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा, वापस गए और उन्हें कहा कि नहीं नहीं आपने जो लिखा ना एकदम बिल्कुल बराबर है। तब तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा ठीक है अभी, तो बाद में उनको मालूम पड़ा रूप गोस्वामी पाद को ये जीव गोस्वामी पाद, अभी तुम अभी चेहरा ही मत दिखाओ, इतना वरिष्ठ वैष्णव है हमारे पास अतिथि के रूप में आए, तुमने उनको अपमान किया, तभी तुम मुझे मेरा चेहरा ही मत दिखाओ। जैसे ही बाघ वाला रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद एकदम बिल्कुल ये हो गए, वो गए एक जहाँ यमुना के तट पे जहाँ मगरमच्छ इत्यादि रहता है गुफा में, उसके उधर आके बैठ गए। बोला कि भाई जीवन जीने का क्या फ़ायदा, जब मेरे गुरु स्वयं कहते हैं कि चेहरा मत दिखाओ, अभी जीने का क्या फ़ायदा। ये बात सनातन गोस्वामी को मालूम नहीं था, ये ऐसा हुआ। सनातन गोस्वामी भ्रमण कर रहे थे, ऐसे आपके सनातन गोस्वामी इसमें कहा कि अलग अलग जगह जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास, सब व्रजवासियों से मिलते हैं। तब एक जगह गए, सारे व्रजवासी एकदम रोने लगे, एक संत है इधर, वो कुछ भी नहीं खाते हैं, खाली हम कुछ आटा दे देते हैं, उसके अंदर कुछ पानी मिला के पी लेते हैं, बहुत बीमार हो चुके हैं, उनके अंदर बहुत सारे फोड़े निकल गए हैं, और हमेशा राधा कृष्ण के विरह में रोते रहते हैं, और रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा करते हैं, रूप रूप करके बोलते रहते हैं मेरे गुरु हैं। तो सनातन गोस्वामी समझ गए रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी हैं। तुरंत तो वो गांव वाले सनातन गोस्वामी को लेके गए, तुरंत ये जीव गोस्वामी की हालत को देख के तो उन्हें कहा चलो साथ में। सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को लेके गए और भजन कुटी के बाहर रखा और अंदर गए। सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से पूछा तो जीव रूप गोस्वामी, ये जो वैष्णव जो है गौड़ीय वैष्णव का है, पूरा हमारा सार क्या, सिद्धांत का सार क्या है, सिद्धांत का सार एक शब्द में बताओ। तो तब रूप गोस्वामी कहा जीवे दया, जीवे दया। राधा माधव की जीवे दया जो है वो हमारा सिद्धांत का सार है, नामे रुचि वैष्णव सेवन जीवे दया, लेकिन इन तीनों में भी श्रेष्ठ जो है जीवों के ऊपर दया है, यही हमारा गौड़िये का सार है। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि हे रूप गोस्वामी, तुम अनेकों अनेकों संसार में सारे जीवों के ऊपर दया दिखा रहे हो, लेकिन एक जीव को भूल गया है। तब रूप गोस्वामी समझ गए सनातन गोस्वामी रिकमेंडेशन की ओर वो अंदर। तब इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद ने अपने हाथों से एक बहुत सुंदर विग्रह को उन्होंने बनाया, बना के जीव गोस्वामी को प्रदान किया और दीक्षा दिया। तो सबसे पहला दीक्षा का समारोह जो है रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के बीच में हुआ। और भी व्यवस्थित तरीके से जीव गोस्वामी वो किस प्रकार हमारे प्रचार के आंदोलन को व्यवस्था किया, वो सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे। जिन विग्रहों को जीव रूप गोस्वामी स्वयं बना के जीव गोस्वामी पाद को दिया, उसका नाम है श्री श्री राधा दामोदर। हम सबको मालूम है राधा दामोदर मंदिर हमारे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि प्रभुपाद जी उधर इतने को साल बैठ के भागवतम के ऊपर वो प्लान कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि राधा दामोदर मंदिर को कि एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तो एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम हियर उसका अर्थ क्या है उसका विषय में हम कल सुनेंगे। तो आज हमने कुछ जीव गोस्वामी के विषय में कहा, कल खास करके रूप गोस्वामी के ग्रंथ परिचय, जीव गोस्वामी पाद के द्वारा लिखा है ग्रंथ परिचय, और जीव गोस्वामी पाद के जो व्यवस्था है सारे गोस्वामी खासकर ग्रुप सनातन अप्रकट होने के बाद उन्हें कैसे कैसे संभाला, उन सब चीज़ों की चर्चा हम कल करेंगे। और साथ साथ में रघुनाथ दास गोस्वामी का भी थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि दो ही दिन बचा है और हमारे पास और तीन गोस्वामी हैं कैसे भी करके। वैसे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन दोनों का लंबा नहीं है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, वो एक दिन में हो जाएगा। चलिए कैसे करके देखते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।